अब क्या किसी के पास कोई प्रश्न है जिसे वे देना चाहते हैं? क्यों बस उन्हें सीधे ऊपर भेज दें, किसी बच्चे को उन्हें लाने दें, या जैसे भी आप चाहें? या हो सकता है यदि हम इसमें से होकर जा सकते, मेरे पास यहाँ एक पन्ने पर लगभग 6 हैं, और फिर यहाँ उसके बाद हमारे पास वहाँ 2 हैं। अब हमें पता लगाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पता लगाया जा सके कि लोगों के मन में क्या है, वे इसके विषय में क्या सोच रहे हैं। देखा, और यही है जो एक अच्छी मजबूत कलीसिया को बनाता है। आपके पास वो समय होना चाहिए, बस जैसे कि आपको दतूरों को निकालकर बाहर करना होगा, आप जानते हैं, और सब कुछ, सारी उन चीजों को रास्ते से हटा दें ताकि आप लगातार आगे बढ़ सकें। तो अब यही कारण है कि हम कभी तो एक बार प्रश्न की रात लेते हैं इसका पता लगाने के लिए। अब यदि कोई प्रश्न है जो, अब इस बार मैंने इसे काफी हद तक खुलासा किया है, और मैंने कहा, अब मैं अक्सर कहता था, अब यदि कोई भी बस वचन से कुछ भी संबंधित है उत्तर इसे पूछें, धन्यवाद भाई। और मैंने कहा, बस किसी वचन से संबंधित कोई भी चीज है उत्तर, देखो हम इसका उत्तर देंगे। लेकिन आज रात मैंने कहा, आप जानते हैं, फिर वे वहाँ आकर वे कहते हैं, भाई बिल, मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपको लगता है यदि फलाना फलाना ने कोई फलाना फलाना कार्य किया तो क्या यह मसीहत है? खैर, यह किसी पर तो दबाव डालने के जैसा है। लेकिन मैंने कहा, उन्हें आज रात यह लेने दो, देखिए यह सब ठीक है, इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या कोई दबाव डाला जा रहा है। ओह, मुझे आज सचमुच अच्छा महसूस हो रहा है। सारी दोपहर घास काटता रहा क्योंकि तेज धूप में बाहर रहने से मुझे सचमुच अच्छा लग रहा था। हमारे पास अब बहुत ही जल्द एक सभा होने जा रही है, मत भूलना, 23 अगस्त को शिकागो के स्टेडियम में, जो 5 सितंबर तक होगी। वहाँ प्रभु में एक महान समय की अपेक्षा करते हैं, और इसका विज्ञापन अब हर जगह किया जा रहा है और सभी अलग अलग अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है, और हम एक अच्छे समय की आशा करते हैं। अब मैं सोचता हूँ, यहाँ एक पन्ने पर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है, और यह सब एक ही चीज से संबंधित है, पीछे उत्पत्ति की पुस्तक में से। अब पहला है उत्पत्ति 1:26 या 1:26-28, जहां वो व्यक्ति, उन्होंने पूछा कि यह क्या होगा, ये क्या प्रश्न है, मेरा मतलब प्रश्न पूछा गया, क्षमा करें, और हम पहले उसे पढ़ना चाहते हैं, और अब उन्होंने इसे यहां लिख कर रखा है, यदि आप इसका तुरंत अनुसरण करना चाहते हैं तो ये ठीक है। कहा, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी करके उसकी रचना की, देखा, और फिर अगले में उसके पास उत्पत्ति है, मतलब नर या नारी, 1, उसके पास उत्पत्ति 2:7 था, उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया, यह दूसरी जगह है, और उन सभी को पढ़ूंगा जिससे कि हम उन्हें यहाँ एक साथ रख सकें, ताकि आप देख सकें। अब पहला, इसका पहला चरण है, अब कहा गया, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके मनुष्य को बनाया, नर और नारी, अब यही है, मैं सोचता हूँ यह पहला बिंदु है। अब उत्पत्ति 2:7 में यह कहता है, उसने बनाया, उसने इसके नीचे लकीर खींची है, लेकिन पहले उसने सृष्टि की, उसके पास तब, उसने नीचे लकीर खींची है, और उसने बनाया, लकीर खींची है, मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में सांस फूकी और इत्यादि। अब क्या अंतर है, या ऊपर के वचनों में कहां पर संबंध बैठता है? अब यह है, अब यदि आपने इसे लिख लिया है तो उत्पत्ति 1:26-28 और उत्पत्ति 2:7, अब यह एक बहुत ही संवेदनशील चीज है, और मैं, हो सकता है ना, इसके बारे में मेरा सिर्फ अपना विचार है, इसलिए मैं आपको इसे उसी तरह से बताऊंगा जैसे मुझे लगता है कि यह है, और यदि आप भिन्न हैं तो कोई बात नहीं। मैं भाई नेविल को उन प्रश्नों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अब वे ठीक हैं। अब इसमें उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके अपने स्वरूप में बनाया, और यदि आप ध्यान देंगे तो हम इसे ले लेंगे ताकि आप इसे पढ़ सकें, और 26, यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहेंगे तो हमें आपके ऐसा करने के लिए खुशी होगी, मेरा मिलान करें। और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखें, आकाश के पक्षियों के ऊपर, पशु के ऊपर जो धरती के हैं, और रेंगने वाले हर एक जंतुओं के ऊपर जो धरती पर रेंगते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब यह मैंने सुना है कि इस पर बहुत बार चर्चा हुई है और दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रहती है। अब उत्पत्ति 2:7 में देखें कि उसने यहाँ क्या किया। तो ठीक है, यहाँ है ये। और परमेश्वर ने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। अब किस प्रकार की बनावट, सो प्रश्न करने वाला पूछना चाहता है, इस उत्पत्ति 1:26 का उत्पत्ति 2:7 के साथ क्या संबंध है? परमेश्वर ने 2 मनुष्य बनाए, और कौन सा मनुष्य था और कौन सा, इसका क्या संबंध है? क्या यह वचन में किस तरह से जुड़ता है? ठीक है, अब यदि आप ध्यान दें तो उत्पत्ति 1:26 में, आइए पहले इसका पहला भाग लेंगे। परमेश्वर ने कहा आओ हम, अब आओ हम हैं, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। हमारे अवश्य ही हम समझते हैं कि वो किसी से बात कर रहा है, वह किसी अन्य अस्तित्व से बात कर रहा था। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे धरती के पशुओं पर अधिकार करें। यदि आप ध्यान दें तो सृष्टि में सबसे पहली चीज जो बनाई गई थी वो निसंदेह प्रकाश था। आप सृष्टि में से होते हुए आगे आते हैं, वो आखिरी चीज जो बनाई गई थी वो क्या था? एक मनुष्य, और स्त्री को पुरुष के बाद बनाया गया था। तो ठीक है, पहला परमेश्वर की सृष्टि में जो अंतिम चीज बनाई गई थी वो मनुष्य जाति है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना पहला मनुष्य बनाया, यदि आपने ध्यान दिया हो तो उसने उसे अपनी ही समानता में बनाया, उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर क्या है? अब यदि हम यह पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि उसने किस प्रकार का मनुष्य बनाया। अब संत यूहन्ना में 4:4, और मैं आप इसे पढ़ें, यीशु उस स्त्री से बात कर रहा था। यदि आप इसकी ओर जाना चाहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने उन्हें अभी लिख कर नहीं रखा है, बस इसे याद आने से ले रहा हूँ, और आप उन्हें अब देखें यदि मैं इसे जल्दी से ढूंढ सकता हूँ। अब आइए लगभग 4:14 से आरंभ करेंगे। और जो कोई भी इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उसे कभी प्यास न लगेगी, और सनातन जीवन के लिए जल के सोते उमड़ते रहेंगे। स्त्री ने उससे कहा, श्रीमान मुझे यह जल दे दे कि मैं जल को खींचने के लिए यहाँ न आऊं। यीशु ने कहा, जाओ और अपने पति को बुलाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें अब उससे थोड़ा ऊपर जाना होगा, पता लगाने के लिए, देखने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ देखें। हो सकता है, नहीं, हो सकता है मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ, और मैं जिस बात को देखना चाहता हूँ। क्या कहते हो, 23वां और 24वां पद? तो ठीक है, तुम आराधना करते हो, ऐसा ही है, तुम आराधना करते हो और तुम नहीं जानते कि किसकी करते हो। हम जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों का है, और यह सही है। देखो, लेकिन वो समय आता है, लेकिन वो समय आता है और अब है कि सच्चे आराधना करने वाले यहूदी या अन्य जाति आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता उसकी आराधना के लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। अब अगला पद है जहां पर मैं लेना चाहता हूं। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, तो उसने किस प्रकार का मनुष्य बनाया? एक आत्मिक मनुष्य। अब यदि आप ध्यान दें, जब उसने सारी सृष्टि बनाई और एक आत्मिक मनुष्य को बनाने के बाद, अब इसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसके लिए जिसने प्रश्न को पूछा है, यह पता चलेगा कि परमेश्वर मनुष्य को पशु, मछली और सारी चीजों पर अधिकार को देता है। लेकिन उसकी वहाँ रचना में उसने जानवरों को नेतृत्व करने के लिए अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मैदान के पशुओं का नेतृत्व करे, जैसे पवित्र आत्मा आज विश्वासियों का नेतृत्व करता है, समझे? दूसरे शब्दों में वो आदम था, परमेश्वर की निचली सृष्टियों में पहला मनुष्य। पहली सृष्टि स्वयं परमेश्वर था, तब परमेश्वर में से लोगोस बाहर आया जो परमेश्वर का पुत्र था, फिर लोगोस में से बाहर जो कि वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, लोगोस में से वो मनुष्य बाहर आया। ओह, अब मेरे मन में एक सुंदर तस्वीर आ गई है। यदि आप मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन इसे उस स्थान पर ले जाऊं जहां आप इसे देखकर सुनिश्चित हो जाएंगे। अब आइए एक छोटी सी यात्रा करें और थोड़ी देर के लिए पीछे जाएंगे। अब मत सोचना कि यह कितना गर्म है, आइए हम ठीक इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, और अब उन पर सोचें। आइए 100 मिलियन वर्ष पीछे चलें, जब दुनिया में इससे पहले कोई तारा हो, चंद्रमा या कुछ भी मौजूद हो। अब एक समय था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यह बस सब हमेशा के लिए और अनंत काल था, और सर्वदा और अनंत काल परमेश्वर था, वो वहाँ आदि में था। अब आइए यहाँ से इस समय के कटघरे के किनारे पर चलें और इन चीजों को घटित होते हुए वहाँ पर देखें। अब किसी भी मनुष्य ने कभी भी पिता को नहीं देखा है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को शारीरिक रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर शरीर के आकार में नहीं है, परमेश्वर तो एक आत्मा है, समझे? तो ठीक है, किसी ने पिता को नहीं देखा, लेकिन पिता के इकलौते ने उसे प्रकट किया, पहला यूहन्ना देखो। अब लेकिन अब ध्यान दें, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल अंतरिक्ष है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक महान अलौकिक अस्तित्व है, यहोवा परमेश्वर है, जिसने हर समय सारे अंतरिक्ष को ढाका हुआ है, वह सनातन से लेकर सनातन था, वो सृष्टि का आरंभ है, यही परमेश्वर है, न कुछ देख सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं, न वातावरण में एक अणु की एक प्रतिक्रिया को, नहीं, कुछ भी नहीं है, न ही हवा, नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ था, यह परमेश्वर था। अब आइए कुछ मिनटों के लिए देखते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी भी मनुष्य ने उसे नहीं देखा, अब वो पिता है, यही परमेश्वर पिता है। अब ध्यान दें, फिर कुछ समय बाद मुझे एक छोटा सा पवित्र प्रकाश दिखाई देने लगा, जिसने आकार लेना आरंभ किया, जैसे एक छोटा सा तेजोमय प्रकाश या ऐसा ही कुछ, तो आप इसे केवल आत्मिक आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन अब देखो, जबकि हम देख रहे हैं, अब पूरी कलीसिया, हम एक बहुत बड़े समय के कटघरे पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और हम यहाँ सीधे इस प्रश्न पर जाएंगे और आप देखेंगे कि वो इसे किस तरह से लेकर आता है। अब तो परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है, और अब अगली चीज जो हम देखना आरंभ करते हैं, अलौकिक देखने वाली आंखों के द्वारा, हम वहाँ एक छोटे से सफेद प्रकाश को आकार लेते हुए देखते हैं। यह क्या है? इसे बाइबल के पढ़ने वालों के द्वारा लोगोस या अभिषिक्त या अभिषेक बुलाया गया था, या जैसा कि मैं कहने जा रहा था, परमेश्वर का वो अंश किसी चीज में विकसित होना आरंभ होता है, जिससे कि मनुष्य जाति को किसी प्रकार का अंदाजा लग सके कि यह क्या था। क्या यह छोटा नीचा एक छोटा सा प्रकाश मंडराने लगा? वो यह परमेश्वर का वचन था। अब परमेश्वर ने स्वयं इस पुत्र को जन्म दिया, इससे पहले यहाँ तक एक अणु अस्तित्व में हो या अणु बनाने के लिए वायु हो, यह था। देखो, यीशु ने कहा, पिता उस महिमा से मेरी महिमा कर जो दुनिया की नींव डालने से पहले हमारे पास थी, देखो बहुत पीछे वहाँ उस ओर। अब संत यूहन्ना एक में उसने कहा, आदि में वचन था, और पहला और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ था और हमारे मध्य में रहा। परमेश्वर स्वयं को एक मनुष्य जाति के सामने प्रकट कर रहा है, अब देखो उसने ये कैसे किया। अब वहाँ पीछे, तब जब यह छोटा तेजो में प्रकाश आता है, अब हम अभी तक कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन केवल अलौकिक आंखों से ही हम वहाँ खड़ा एक तेजो में प्रकाश देखते हैं। अब यही परमेश्वर का पुत्र है, लोगोस। अब मैं उसे एक छोटे बच्चे की तरह पिता के दरवाजे के सामने खेलते हुए देख सकता हूँ, पूरी अनंतता के साथ, समझे? और अब फिर अपने काल्पनिक बनावट में वो सोचना आरंभ करता है कि क्या चीजें होंगी, और मैं उसे यह कहते हुए सुन सकता हूँ, वहाँ उजाला होने दो। और जब उसने ऐसा कहा तो एक अणु टूट पड़ा और सूर्य अस्तित्व में आया। वो सैकड़ों लाखों वर्षों तक घूमता रहा। आग के गोले का आकार लेता है और जलने लगता है और आकार को लेता है, जैसे ये आज है, अभी भी जल रहा है, अभी भी अणु टूट रहे हैं। यदि परमाणु बम को कभी छोड़ा जाए तो परमाणु की लड़ी टूटने या पृथ्वी सूर्य की तरह हो जाएगी, उस ओर बस फट रही होगी और विस्फोट हो रही होगी। यदि आप किसी दूसरे महाद्वीप पर खड़े होकर और इसकी ओर देखें, यह एक और सूरज की तरह ही दिखाई देगी, जहां पर अणु इस धरती को जला रहे होंगे। यदि उस कड़ी को कभी छोड़ दिया जाए और यह इस तरह से घूमते गोल गोल घूमने लगेगी, अरबों तापमान की यह बड़ी बड़ी लपटें लाखों करोड़ों मील की दूरी तक पहुंचती है, उस गर्मी की जो उस सूर्य से निकलती है। अब इसे अभी देखें, सुंदर। अब उसने सूर्य को बनाया है और फिर पहली बात जो आप जानते हैं, उसमें से एक बड़ा आग का गोला गिरता है जिसका वजन लगभग बस इसके जितना ही होगा, निकला तेजी से। फिर यह लोगोस जो अब यहाँ है, परमेश्वर का पुत्र, इसे देख रहा है। वो इसे 100 मिलियन वर्षों तक के लिए गिरने देता है और वो इसे रोकता है। फिर एक और वहाँ से उठता है और वो उसे लाखों वर्ष तक के लिए उड़ने या गिरने देता है, फिर वो इसे रोक देता है। अब हम खड़े हुए हैं, इसे अस्तित्व में आते हुए देखते हैं। अब उसके मन में कुछ तो है और वो क्या कर रहा है? वो अपनी पहली बाइबल को लिख रहा है, पहली बाइबल जिसे मनुष्य ने कभी देखा। वे तारे नक्षत्र था और यह एक सिद्ध, बस यह यहाँ इस बाइबल के साथ जुड़ता है। इसका आरंभ होता है नक्षत्र में, सबसे पहली राशि है कुआरी। क्या यह सही है? नक्षत्र का अंतिम भाग कौन सा है? सिंह, वो सिंह। यही यीशु का पहला आगमन है, वो एक कुआरी के जरिए से आया था। दूसरा, वह यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में आता है। देखा, इस सब को बनाया, कैंसर का युग और वहाँ से होते हुए सब कुछ। अब उसने इस सब को आकाश में रख दिया और इसे स्थान में रख दिया। ये सारे उल्काएं, पृथ्वी के टुकड़े या सूरज यहाँ पर लटक रहे थे। अब जब विज्ञान उन शक्तिशाली विस्फोटक को देखने के लिए जाता है जो गिरते हैं, यह परमेश्वर को असत्य प्रमाणित नहीं करता है, यह बस मेरे लिए इसे प्रमाणित करता है। देखिए, यह बस इसे और अधिक वास्तविक बनाता है। अब ध्यान दें, ये सभी शक्तिशाली विस्फोटक उस तेज सूरज से दूर वहाँ लटक रहे हैं और उस वातावरण में से होते हुए जाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने संग्रहित किया है। और पहली बात जो आप जानते हैं, यह सिर्फ एक बर्फ के पत्थर से आरंभ हुआ। अब यह वो पृथ्वी थी जो अस्तित्व में आई, बस जलते हुए अंगार का एक बड़ा टुकड़ा उड़ते हुए उस ओर आ गया। इसके नीचे से अब एक परिवर्तित होते जलते हुए ज्वालामुखी के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से हर जगह से विस्फोट ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है। और विज्ञान ये दावा करता है कि यह दुनिया इसके ऊपर की परत है जहाँ पर हम रहते हैं। यह बस बिल्कुल सेब के छिलके के जैसा ही है और पूरा अब इसका वर्गा आकार 25,000 मील है। यह संभवत है 8,000 मील, लगभग 8,000 मील मोटा होगा। और जरा सोचिए, वहाँ उसमें यह एक जलता हुआ ज्वालामुखी है और पृथ्वी का 2/3 भाग उसके 2/3 भाग से भी अच्छा है, ये जल में है और इसका 1/3 भाग जमीन में है, लगभग 1/3। और इसकी छोटी सी परत जिस पर हम रह रहे हैं, यह पूरी तरह से खतरनाक विस्फोटकों, गैस, गैसोलीन, तेल, हर चीज से भरा हुआ है। क्या यह सही है? और इसका 2/3 भाग इसके 2/3 भाग से बेहतर है जहाँ जल है। जल का सूत्र या फॉर्मूला क्या है? इसका 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। विस्फोटक हर एक कमरे में गर्म को ठंडा करने से अलग करने के लिए पर्याप्त बिजली है और यह एक कमरे को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त बिजली को तैयार करेगा। आप एक गोल्फ के बॉल में इतने अणु डाल सकते हैं कि न्यूयॉर्क को धरती पर से उड़ा दें। और फिर मनुष्य नरक के एक बर्तन पर बैठकर अपनी छाती पर ही प्रहार करता है और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है और कहता है, नरक जैसी कोई जगह नहीं है, मैंने यहाँ थोड़े में लिख रखा है और हम इसे ले लेंगे। देखिए, आप हर दिन इसके एक बड़े बर्तन पर बैठे हुए हैं और जब आप यहाँ पर हैं तो आप ठीक इसके ऊपर बैठे हैं और नरक ठीक आपके नीचे है। और अब ध्यान दें, लेकिन अब जब इसे पहली बार पाया गया था, जब यीशु अब इस और छोटे से तेजों में प्रकाश को देखें, अब मैं देख सकता हूँ कि यह इस धरती की ओर बढ़ रहा है और इसके शीर्ष पर पहुँचता है और इसे यहाँ सूर्य के नजदीक ले जाना आरंभ करता है। यह बर्फ की एक बड़ी गेंद के अलावा और कुछ नहीं है, और जब यह पिघलना आरंभ होता है तो उत्तरी इलाकों में बड़ी बड़ी हिम की नदी कटकर और नीचे आने लगती है, और जब ऐसा हुआ तो इसने कैंसस और टेक्सास और वहाँ के सभी स्थानों को काट दिया और मैक्सिको की खाड़ी में आगे चला गया। और पहली बात जो आप जानते हैं, सारी चीज पानी से ढकी हुई थी। फिर अब हम उत्पत्ति एक में पहुँचते हैं, अब हम बाइबल में पहुँचते हैं और हमारी तस्वीर से बाहर निकलकर बाइबल में जाते हैं। उत्पत्ति एक, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या ये सही है? और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया। अब उसने जल को अलग कर दिया, पहाड़ों और जमीनों और आदि को ऊपर लाया, इसे सुखा दिया, वनस्पति और हर एक चीज उसने इसे बनाया, और उसने चांद को बनाया और इसके समुद्र की सीमाओं को ठहराया जिससे कि यह आगे न बढ़ सके। उसने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया, बनाया, बाकी की सारी चीजें बनाई, सारा पशु का जीवन, पक्षी, मधुमक्खियाँ, बंदर और ये जो कुछ भी है, इन सभी को यहाँ पृथ्वी पर रख दिया। और फिर उसने अब ये प्रश्न पूछा था, आओ हम कौन, पिता और पुत्र, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। अब यदि एक मनुष्य को ऐसे ही कुछ तो उस ओर छोटा सा पवित्र प्रकाश बनाया गया था, या ऐसा ही कुछ तो जिसे देखा नहीं जा सकता, जो एक आत्मिक अस्तित्व है, उसने स्वयं को थोड़ा और अधिक खोला या प्रकट किया ताकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं की एक त्रिएकता बनाए। और यहाँ परमेश्वर था, अब स्वयं को खोला वहाँ पर उसके अंदर, आओ हम मनुष्य को बनाए जो उसका पुत्र था, उसमें से एक वंशज मनुष्य को हमारे खुद के स्वरूप में। वो एक अलौकिक जीव था और वो मैदान पर के पशुओं और इत्यादि पर अधिकार रखे। अब मनुष्य ने नेतृत्व किया, मनुष्य उन पशुओं और हर एक चीज का नेतृत्व किया, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा आज एक वास्तविक सच्चे विश्वासी की अगुवाई करता है। परमेश्वर की आवाज वहाँ है, मेरा मतलब मनुष्य की आवाज बोल सकती है और कह सकती, पशुओं को इस ओर बुलाता है, भेड़ों को इस चारागाह में बुलाता है, मछलियों को इस पानी में बुलाता है। देखो उसके पास अधिकार था, हर एक चीज उसकी आज्ञा का पालन करती थी। अब लेकिन तब मिट्टी को सींचने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति दो, मिट्टी को सींचने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को आकार दिया, उत्पत्ति 2:7, धरती की मिट्टी में से बनाया। अब उसने उसके बाद उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी में से बनाया और इस अलौकिक आत्मा को डाल दिया। अब वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरे पास इसकी बहुत सी तस्वीरें हो सकती हैं। मैं आदम को खड़ा देख सकता हूँ। आओ हम इसे इस तरह से लेंगे, उसे एक पेड़ की तरह खड़ा देखते हैं। परमेश्वर ने उसे बनाया था, वो लगभग मरा हुआ सा था जितना वो हो सकता था। उसके पैर की उंगलियाँ जड़ों की तरह जमीन में चिपकी हुई थी, और परमेश्वर ने कहा वहाँ होने दो, या उसमें जीवन की सांस को फूका और वो उछल पड़ा, अपने आपे में आ गया। वो एक उसमें जीवन की सांस को फूका, वो एक जीवित प्राण बन गया। अब और वो आगे बढ़ना आरंभ करता है, आगे बढ़ता है। और तब परमेश्वर ने उसकी बगल में से उसका एक टुकड़ा लिया, एक फसली, एक स्त्री को बनाया। अब उसे आत्मा कहाँ से मिली? स्त्री, समझे? जब वो उत्पत्ति 1:26 उसने कहा, आओ हम मनुष्य को हमारे अपने स्वरूप में बनाए, हमारे अपनी खुद की समानता में, उसने उन्हें पुरुष नर और नारी बनाया। उसने मनुष्य के लिए बलवान आत्मा बनाई, उसने स्त्री के लिए कोमल छोटी नाजुक नारीत्व की आत्मा बनाई। और जब आप किसी स्त्री को पुरुष की तरह व्यवहार करते देखते हैं, तो वो अपने स्थान से बाहर आ गई है, आप देखते हैं आरंभ में, समझे? तो ठीक है, उसे चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यह शर्म की बात है कि महिलाओं ने उनके सभ्य नारीत्व के स्थान को खो दिया है। यह शर्मनाक बात है, मैं आपसे कहता हूँ ऐसा है। इसका आप जानते हैं कि मैं इसे कहूँगा, अब मैं यहाँ आप महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निसंदेह यदि इससे दुख पहुँचता है, यह बस होता ही है। लेकिन देखो मुझे आपसे कुछ पूछने दो, ऐसा हुआ करता था कि महिलाएं इतनी नारीत्व होती थी, इतना तक कोई पुरुष उनसे बात करने जाता था और वे शर्मा जाती थी। जो कुछ भी हो, शर्माना क्या होता है? मैंने ऐसा बहुत समय से नहीं देखा है। यदि कोई महिला शर्मा भी जाती तो मुझे यह भी पता नहीं चलता कि यह क्या है। उनमें अब वो गरिमा और नहीं बची है, वो सारी जो अच्छी नारीत्व की आत्मा होती है, वे बस वे कर सकती हैं, वे पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हैं, पुरुषों की तरह अपने बाल काटती हैं, पुरुषों की तरह धूम्रपान करती हैं, एक पुरुष की तरह पीती हैं, एक पुरुष की तरह गालियां देती हैं, एक पुरुष की तरह वोट देती हैं, एक पुरुष की तरह काम करती हैं, सो असभ्य कठोर बन गई हैं। ओ प्रभु, इससे पता चलता है कि आपको कहाँ होना है। बिल्कुल यही है, उस छोटी सी महिला के जैसे आप उसे अब और नहीं देख पाएंगे। ऐसी महिला व्यक्ति को ढूंढना कठिन है, क्या ये सही नहीं है? हाँ, ये सच है। इसलिए एक महिला को खड़े होकर और पुरुष के जैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, बड़े और बलवान पुरुष की तरह, क्योंकि वो सुशोभित होती है। परमेश्वर ने उसे वैसा ही बनाया है। मैं इसे वचनों से साबित कर सकता हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये सही है। और लेकिन निसंदेह हम इस प्रश्न से हट रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न से बहुत ज्यादा हटना नहीं चाहता। लेकिन देखिए, यही है जहाँ उसने अपना पहला मनुष्य बनाया, वो उसके अपने स्वरूप में था। और फिर परमेश्वर, यहाँ तक इससे पहले एक तारा हो, वो जानता था कि यह दुनिया होगी, और वो जानता था कि मैं विलियम ब्रैनम होऊंगा जो मंच से सुसमाचार का प्रचार करेगा, और आप जॉन डो होंगे जो दुनिया के कभी आरंभ होने से पहले इसे सुनते हुए बैठे होंगे। हालेलुया। अब यही है जहां लोग कभी कभी उस नियमवाद और कैल्विनवाद में होते हैं, पूरी तरह उलझ जाते हैं। देखा, कहते हैं कुछ लोगों को नाश होने के लिए क्यों ठहराया गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर होने के नाते वो जानता है कि कुछ लोग हैं जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझे, देखो, उसे परमेश्वर होने के नाते उसे आरंभ से ही अंत को जानना था, क्या उसने नहीं जाना? सो वो जानता था कि उसके पास कुछ स्त्रियां होनी है, इसलिए उसने उनकी आत्मा को ठीक वहाँ पर बनाया। बाइबल में कहा गया है कि उसने एक में ऐसा किया, उत्पत्ति 1:26 में उसने उस मनुष्य को बनाया आदि रूप में, नर और नारी। आमीन। देखा, एक आदि रूप में, इससे पहले वो कभी धरती की मिट्टी में से आकार को देता, उसने स्त्री और पुरुष को बनाया। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना ही उसके अपने स्वरूप में। यह शरीर परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, यह शरीर पशुओं के स्वरूप में है। क्या मैं अपना कोट उतार सकता हूँ? यहाँ गर्मी बढ़ रही है, मैंने एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा। पत्नी ने मुझे बताया कि जेसी कपड़े धोने के लिए नहीं आई, इसलिए। लेकिन देखिए, अब हम यहाँ एक ऐसे विषय पर हैं जिसका महत्व पुलपिट पर फटी हुई शर्ट से कहीं अधिक है, क्या ऐसा नहीं है? इसका महत्व अनंत जीवन है। अब ध्यान दे मनुष्य, परमेश्वर आरंभ से ही जानता था कि उसके पास पुरुष और महिलाएं होने जा रहे हैं, और वो जानता था कि उद्धारकर्ता यहाँ पर होगा, और उसे यीशु को लाना है, और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जब यीशु यहाँ धरती पर था, तब उसने चेलों से कहा कि वो उन्हें जगत की बुनियाद डालने से पहले से जानता था, इससे पहले कि दुनिया कभी अस्तित्व में आती। और परमेश्वर ने ये भी कहा, या पौलुस बोल रहा है गलतियों में, कहा कि उसने हमें नियुक्त किया और उसी में बुलाया, इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था। उसके बारे में सोचें, वो परमेश्वर, कोई भी यह सुनना चाहेगा कि वचन इस बारे में क्या कहता है, अपने हाथ उठाए। यह ठीक प्रश्न के साथ साथ जाता है। गलतियों के पहले अध्याय में मेरे साथ निकालें, यहाँ पर देखें। मेरा मतलब गलतियों में नहीं, मेरा मतलब इफिसियों में। अब ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। इफिसियो 1, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, पवित्र लोगों के लिए जो इफिसुस में है और यीशु मसीह में विश्वास योग्य है, उस पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। अब यहाँ है ये, ध्यान देना, जैसा उसने जगत की बुनियाद डालने से पहले हमें उसी में चुन लिया। यह बहुत ही अच्छा है, क्या ये नहीं है? यह बहुत अच्छा नहीं है, ये सचमुच में अच्छा है। इससे पहले वहाँ एक दुनिया की बुनियाद हो, परमेश्वर ऑर्मन नेविल को जानता था, और जानता था कि वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। क्या ये अद्भुत नहीं है? चुना है क्योंकि वो एक कलीसिया का सदस्य है, और परमेश्वर जानता था कि वो उसके पास कलीसिया होने जा रही है और उसने कहा, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया से बोलते हुए कहा, उसने हमें उसी में चुन लिया। अब हम सभी मसीह की देह के सदस्य हैं, क्या यह सही है? और परमेश्वर ने इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था, उसने आपको और मुझे उसमें चुन लिया। इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था, प्रभु क्या यह अद्भुत नहीं है? अब उसने पहले मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया और हम उस स्वरूप पर वापस लौट रहे हैं। यह सही है, हमारे पहले बनाए गए स्वरूप की ओर। जब परमेश्वर ने मुझे बनाया, विलियम ब्रैनम, मैं दुनिया की बुनियाद डालने से पहले था। उसने मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा को बनाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे किसी भी चीज की सुधि नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ था। और मैं नहीं सोचता कि आप इसे पकड़ रहे हैं, लेकिन अब बस एक मिनट। यीशु ने चेलों से कहा कि वो उन्हें संसार की बुनियाद से पहले ही जानता था, और पौलुस ने यहाँ पर यह कहा, संसार के आरंभ होने से पहले ही उसने हमें उसमें चुन लिया। अब वहाँ मेरा, ऑर्मन नेविल का और आप बाकी सारे लोगों का कुछ भाग यहाँ पर था। यही है जो दुनिया के आरंभ होने से पहले ही मसीह यीशु में है, और यही है जो उस बात पर मेरा विश्लेषण है। मैं सोचता हूँ कि आज जो लोग इस आत्मा के अधीन हैं या आत्मा के इन दूत जीवों का एक भाग, वे आत्माएं जो कि परमेश्वर के इर्द गिर्द घूमती थी, जो आरंभ में कभी नहीं गिरी और स्वर्ग में शैतान के झूठ का विरोध किया, और धरती का दो तिहाई भाग पाप में है, और उससे भी अधिक जिन दो तिहाई दूतों को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था, और वे दुष्ट आत्माएं लोगों में आती हैं और उनके शरीर में वास करती हैं। देखा मेरा क्या मतलब है? वे दुष्ट आत्माएं थी जो एक बार वे एक समय अस्तित्व में थी, और वे लोगों के बीच में आकर और उन्हें एक स्वभाव को देती हैं। यीशु ने उन सात आत्माओं को मरियम मग्दलीनी में से बाहर निकाला था। अभिमान, भींग मारना, बड़े लोग आप देखते हैं, अशुद्ध, गंदी, अश्लीलता, प्रतिस्पर्धी, कलह, ये सारी चीजें देखो, वे आत्माएं थी जो वहाँ पीछे तब बनी थी जब परमेश्वर ने अपने खुद के स्वरूप में मनुष्य को बनाना आरंभ किया था। उन अलौकिक जीवों, उन आत्माओं को बनाया, और फिर उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी में डाला, जो पहला मनुष्य था, आदम, और उस मनुष्य को स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। यहाँ इस मानव मनुष्य को एक जानवर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है। ये मानव शरीर जानवरों के स्वरूप में बने हुए हैं। हमें बिल्कुल बंदर जैसा हाथ मिला और पैर एक भालू के जैसे मिले। एक छोटे से भालू के बच्चे को लें, उसके कपड़े निकाल लें, उसकी खाल खींच लें और एक छोटी बच्ची के ऊपर भाग में रख दें और अंतर को देखें। भाई, नजदीक से देखने पर आपको यकीन हो जाएगा, संपूर्ण मध्यपट का आकार, बनावट लगभग एक जैसा ही है जिस तरह से ये बना है, और इसका स्वरूप और सब कुछ ठीक बिल्कुल वैसा ही है। ये पशु जीवन के स्वरूप में है, क्योंकि उसे कुछ तो एक जानवर के उद्देश्य पर बनाया गया था, क्योंकि जानवरों को नेतृत्व करना ही उसका कर्तव्य था। और आप मनुष्य से पवित्र आत्मा को निकाल दें, तो वो जानवर से भी नीचा होता है, वो जानवर से भी बदतर है। यह कहना कठोर बात है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को लें जिसका दिमाग कभी भी ठिकाने पर नहीं होता है, उसके विचारों को निर्देशित करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं होता है, और इस तरह की चीजें, वो एक बच्चे को माँ की गोद में से लेकर फेंक देगा और उसे जानवर की तरह वासना के लिए बर्बाद कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक महिला जो अच्छी नहीं है, आप एक पुरानी सुअरनी या एक पुराने कुत्ते को लें, हमने इसे इस प्रकार के नाम दिए हैं, लेकिन उस कुत्ती का आचरण सिर्फ उसके बच्चों के लिए होता है और सुअरनी की उसके बच्चों के लिए होता है। लेकिन एक चिड़चिड़ी निकम्मी महिला भी ऐसी होती है, जैसे हर समय बस गंदगी। यह सही है, तो याद रखें कि आप मसीह के बिना, जो आपकी नैतिकता है, कुत्ते से भी नीचे तक गिर सकती है। यह सही है, कुत्ते को खुद को ढकने के लिए कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, न ही किसी अन्य जानवर को। ये मनुष्य था जो गिर गया, न ही पशु का जीवन, लेकिन पशु का जीवन मनुष्य मानव जीवन के नीचे है जो इसके अधीन था, क्योंकि मनुष्य ही उसका मार्गदर्शन और उसका सर्वोच्च अगुवा था, और धरती का हर एक पशु मनुष्य से डरता है। कोई मुझसे किसी समय शिकार के बारे में पूछ रहा था, क्या आप इससे डरते हैं? क्यों हर जानवर को हमेशा ही मनुष्य से डरने के लिए बनाया गया था? क्योंकि ऐसा पहले या आरंभ से ही होना चाहिए। देखा, निश्चय ही ऐसा है। आप दौड़ें और वो आपके पीछे दौड़ेगा, ये सही है। लेकिन एक कुत्ता या कोई भी जो आप चाहें तो ठीक है। लेकिन अब उस मनुष्य पर ध्यान दें जब वो यहाँ आया। अब देखो, यहाँ आप कहते हैं अब इसके बारे में अब क्या है भाई ब्रैनम? अब यहाँ आपको बिल्कुल ठीक परमेश्वर मिलता है और वननेस और त्रिएकता के बीच आपको वो चीज बिल्कुल ठीक अभी मिल जाएगी। अब देखो, जब परमेश्वर नीचे उतरा, उसने स्वयं को खोल दिया, स्वयं को प्रकट किया, यहाँ तक वो इस मनुष्य के पास आ गया। अब मनुष्य ने अपनी आत्मा में पाप नहीं किया, लेकिन अपने शरीर में, वासना, जुनून में। फिर जब उसने पाप किया तो अपने आप को अपने रचयिता से अलग कर लिया। और फिर परमेश्वर लोगोस, उसका वही रचयिता, नीचे आया और मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया था। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और फिर उसे जानवर के स्वरूप में बनाया गया था और वह गिर गया और परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में नीचे उतर आया। मनुष्य मसीह यीशु में पीड़ा को सहने के लिए। परमेश्वर आत्मा में पीड़ा को नहीं सह सकता। वो आत्मा में रहकर भला शारीरिक पीड़ा को कैसे सह सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को खोला और मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया था ताकि उस खोए हुए मनुष्य को छुड़ाए, समझे? और फिर परमेश्वर ने शरीर में कष्ट को सहा। पहला तिमुथियुस 3:16, इसमें कोई विवाद नहीं, यह तर्क वितर्क है। भक्ति का भेद बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था, दूतों को दिखाई दिया और प्रचार को किया उन अन्य, और विश्वास किया और पिता के दाहिने हाथ पर ग्रहण किया गया। क्या ये सही है? परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया और मानव शरीर में रहा और परीक्षाओं को सहन किया। परमेश्वर मसीह में था, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था। देखा, प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम। अब अभी मैं सोचता हूँ कि यह उस पुरुष और महिला को समझ जाएगा। अब एक महिला, मुझे इसे अभी ठीक से लाने दीजिए जिससे कि आप इसे देख सकें। देखो, स्त्री अपने पति के अधीनता में होती है और बाइबल ऐसा कहती है एक पुरुष को अपनी पत्नी पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे किस तरह बदल दिया है। स्त्री पुरुष पर अधिकार करती है, अब तुम घर पर ही रहो जॉन, तुम नहीं जाओगे, और इससे बात खत्म हो जाती है। हाँ मेरी प्रिय, देखा, लेकिन मुझे आपको कुछ तो बताने दो महोदय। आपको अपनी पत्नी के लिए जवाब देना होगा, लेकिन आपकी पत्नी को कभी भी आपके लिए जवाब नहीं देना होगा। आप स्त्री का सिर हो और परमेश्वर पुरुष का सिर है, इसलिए उसने कहा पुरुष मसीह के कारण अपने बाल को काटे और स्त्री अपने बाल को रखे, क्योंकि यदि वो अपने बाल को काटती है तो वो अपने पति का अनादर करती है। देखा, आपने देखा कि वचन जो कहता है उससे मेरा क्या मतलब है? एक दिन की बात है, शिविर रिपोर्ट में मुझ पर उस बात पर गर्म हो गया था। वे महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे और महिलाओं को लंबे बाल रखने चाहिए, और मैंने कहा एक महिला जो अपने बाल काटती है बाइबल के अनुसार उसके पति को अधिकार है कि उसे तलाक दे दे। यह सही है, यही है जो बाइबल कहती है, यह बिल्कुल सही है। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें सिखाया गया था, ऐसा ही है। देखा, बस यही है जो ढीला छोड़ दिया गया है। उसने कहा अब यदि वे इसे काटेंगी, यदि वहाँ कुछ तो गलत है, तो उन्हें अपने बालों को काटना पड़ा। कहा उसे एक उस्तरा लेकर और पूरा मुंडन करने दो और उसके बालों को पूरा साफ करने दो जब तक कि ये उसके सिर पर ना आ जाएं। यह सही है, यही है जो वचन ने कहा है। ये कहता है यदि वो अपने बाल को काटती है तो वो अपने पति का अपमान करती है, और जो महिला असम्मानजनक है उससे अलग हो जाने और तलाक लेने का वैध अधिकार है, लेकिन अब वो दोबारा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे तलाक में डाल सकता है। यह सही है, यही वचन है। ओ भाई, हमें कुछ प्रश्न रात्रियों की आवश्यकता है। यह सही है, यह पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय है, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। अब यह महिला, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नर और नारी, क्या आपने देखा कि उसने क्या किया? उसने मनुष्य को बनाया, उसने बनाया। अब यह पहला प्रश्न है, देखिए उसने उन्हें बनाया और इत्यादि। उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 2:7, उसने उन्हें धरती की मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में सांस भरी। क्या अंतर है या उपरोक्त वचनों में इसका संबंध कहाँ है? पहले मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ क्या संबंध है? पहला मनुष्य ही दूसरा मनुष्य है जो पांच चेतनाओं में प्रकट बना, समझे? ठीक, अभी आप परमेश्वर को इस तरह से हाथों से नहीं छू सकते, आप परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसने आपको ऐसा करने के लिए इसे नहीं दिया है। आप क्या आपने कभी किसी बूढ़े संत को मरते हुए सुना है जब वे कहते हैं वहाँ पर माँ है, मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है जब लोग देखो ये क्या है, ये आंखें धुंधली होती जा रही हैं और अलौकिक आंखें आ रही हैं, देखा? और फिर कभी कभी यदि परमेश्वर ऐसा करता है तो हम ऐसे दर्शनों को देखते हैं जहां वो स्वाभाविक आंख धुंधली हो जाती है, ठीक हमारे सामने, हम ठीक सीधे सामने की ओर देखते हैं और हमारे सामने एक दर्शन होता है जो परमेश्वर की अलौकिक बातें दिखाता है, समझे मेरा क्या मतलब है? तो फिर देखो जब यह धरती पर का डेरा जो यहाँ अब यहाँ पर आप में से कुछ महिलाएं और पुरुष बूढ़े हो रहे हैं, देखो जब यह धरती पर का, मैं वहाँ 92 वर्ष के बूढ़े पिता के बारे में सोचता हूँ, जब यह धरती पर का डेरा सरी का भवन गिराया जाता है वहाँ एक आत्मिक मनुष्य होता है, एक आत्मिक देह जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है जो नष्ट नहीं हो सकती। मैं आपको वहाँ देखूंगा, मैं वहाँ पर चलूंगा, मैं वहाँ उसमें भाई नेविल को छू नहीं सकता क्योंकि यूहन्ना ने उन्हें देखा और वे वेदी के नीचे प्राण थे, पुकार रहे थे कब तक प्रभु कब तक। आप जानते हैं क्यों? हमने प्रकाशित वाक्य में से होते हुए बताया है और वहाँ वे किस तरह से लौटने की इच्छा रखते थे और अमर हार देह को धारण करना चाहते थे, वे चिल्ला रहे थे कब तक प्रभु। अब वे एक दूसरे को जानते थे लेकिन वे बात नहीं कर सकते थे और हाथ नहीं मिला सकते थे, या मैं कल्पना करता हूँ कि वे बात कर सकते थे लेकिन वे हाथ इत्यादि नहीं मिला सकते थे। इसे साबित करने के लिए यहाँ वो स्वरूप है। तब एंदोर की जादूगरनी ने शेमुल की आत्मा को बुलाया और शाऊल ने उस पर दृष्टि की और उसने पहचान लिया कि वो शेमुल है, और शेमुल ने शाऊल को पहचान लिया और कहा तूने मुझे मेरे विश्राम में से क्यों बुलाया, देखते हुए कि तू परमेश्वर का शत्रु हो गया है और परमेश्वर तुझसे दूर हो गया है, क्या यह सही है? और वहाँ बूढ़ा शेमुएल अपने भविष्यवक्ता का वस्त्र पहने खड़ा था और उसने उसकी ओर देखा, वो एक सूट में था। जादूगरनी ने उसे देखा और जमीन पर गिर पड़ी और बोली मैं देवताओं को धरती पर से ऊपर आते हुए देखती हूँ। उसने कहा तुमने मुझे क्यों परेशान किया, और उसने कहा खैर मैं जानना चाहता हूँ कि लड़ाई कैसी चल रही है। कहा कल तुम लड़ाई में मरोगे और उसके बेटे, और कल रात इस समय तक तुम मेरे साथ रहोगे। देखा अब वो सुदी में था और वो वैसा ही दिख रहा था जैसा वो उस वक्त दिखता था जब वो यहाँ धरती पर था उस जादूगरनी को जो खड़ी होकर उसे और शाऊल को देख रही थी। अब ध्यान दें, बहुत सी बार पिता या माँ के बारे में क्या, जब वे मर रहे थे और उन्होंने अपने प्रिय जनों को वहाँ खड़ा हुआ देखा था, उन्होंने उन्हें पहचान लिया लेकिन यह अलौकिक शरीर में है। लेकिन अब यहाँ पर महिमामय भाग है, पुनरुत्थान के समय यीशु के वापस लौटने पर यह वो शरीर नहीं होगा। तब वो शरीर, वो अलौकिक जीव जिसे परमेश्वर ने आदि में बनाया था, यह दूसरे शरीर को पाने के लिए धरती पर वापस आएगा जो किसी स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ नहीं होगा लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया होगा। हालेलुया, कि आप कभी भी बूढ़े न हो या झुरिया न पड़े, आपके सिर पर कभी सफेद बाल न हो लेकिन हमेशा के लिए सिद्ध रहें। हालेलुया, ओ भाई यह मुझे गर्मी की रात में चिल्लाने को लगाएगा, यह सही है, ओह मैं शरीर का ये वस्त्र उतार दूंगा और उठूंगा और सनातन के इनाम को हासिल करूंगा। संसार में हमें किस विषय में चिंता करने की जरूरत है? संपूर्ण योजना ठीक वहाँ पर रखी हुई है कि परमेश्वर ने आरंभ में मुझे कैसे बनाया। मैं यहाँ धरती पर आया हूँ, मैंने एक सुसमाचार के प्रचारक के रूप में अपने स्थान को ग्रहण किया है, या आप उद्धार प्राप्त पुरुष या महिला के रूप में हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवन को जीते हैं। हालेलुया, और वही आत्मा यहाँ से चली जाती है जो पीछे आरंभ में वहाँ थी। मैं यह जानने की सुधि में वापस जाऊँगा कि मैं यहाँ पर था, हालेलुया, और उसके बाद वहाँ वेदी के नीचे विश्राम में प्रतीक्षा करूँगा हमेशा के लिए, धन्य। और फिर जब मैं वापस लौटता हूँ ये शरीर जो इसके सर्वोत्तम चरम पर था मैं उसे ले लेता हूँ, इससे पहले कि इसे कभी मृत्यु आए। लगभग 22 या 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु आप पर आने लगती है, आप गिरना आरंभ होते हैं, आप वो पुरुष नहीं हैं जो आप हुआ करते थे और वो महिला नहीं है जो आप हुआ करती थी। लगभग 25 वर्ष की आयु के बाद कुछ तो आ जाता है, आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती है, आप पहले की तरह धुलाई नहीं कर सकते। 30 आप पूरी तरह इस पर ध्यान दे सकते हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप मेरी तरह 44 वर्ष के नहीं हो जाते और तब आप वास्तव में इस पर ध्यान देंगे। लेकिन ओ भाई, जब तक मैं 80-90 का नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें और उस छड़ी को लेकर वहाँ खड़ा रहूँगा। ये क्या है, परमेश्वर ने बस मुझे दौड़ने के लिए दौड़ में रखा है, लेकिन किसी महिमामय दिन यह मृत्यु है जो आ रही है। मेरे एक समय कंधे सीधे थे, मेरे बाल काले थे और मेरा सिर भरा हुआ था और मेरी आंखों के नीचे कोई झुर्रियां नहीं थी, और अब मेरी ओर देखें, सिकुड़ रहा हूँ, कंधे झुक रहे हैं, मोटा हो रहा हूँ और मेरी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर गंजा हो गया है। क्यों? देखो, पिछले 20 वर्षों से मृत्यु मेरे साथ क्या कर रही है। मृत्यु ऐसा कर रही है, मेरे 80 वर्ष का होने तक प्रतीक्षा करें यदि परमेश्वर मुझे जीवित रहने दे, और देखो मैं कैसा दिखता हूँ। इस तरह से एक पुरानी छड़ी पर खड़ा रहूँगा, कहीं तो इस तरह हिल रहा होऊंगा। लेकिन हालेलुया, किसी महिमामय दिन मृत्यु अपने पूरे प्रभाव को उठा लेगी। फिर जब मैं पुनरुत्थान में जी उठूंगा तो मैं वही हो जाऊंगा जो मैं था, जैसे परमेश्वर ने मुझे यहाँ धरती पर मेरे सबसे अच्छे रूप में बनाया था, एक ऐसे शरीर में जो श्रीमती ब्रहणम और श्रीमान ब्रहणम के द्वारा नहीं बनाया गया है लेकिन स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। लोभ से आजाद, पाप से आजाद, किसी भी अन्य चीज से आजाद, ना ही कभी कोई बीमारी, ना दिल का दौरा पड़ेगा। ओ प्रभु, फिर मैं अपनी छोटी सी पत्नी का हाथ पकड़ूंगा और इस तरह परमेश्वर के स्वर्ग में नए सिरे से चलूंगा। आप भी वैसा ही करेंगे, ना ही वो बूढ़ी सफेद बालों वाली महिला जिसके साथ आप आज रात घूम रहे हैं, जिसे आप अपनी पत्नी कहते हैं, लेकिन वो बस उतनी ही सुंदर होगी जितनी उस दिन थी जब आपने वेदी पर उससे विवाह किया था। हालेलुया, यह किसी भी व्यक्ति को चिल्लाने के लिए काफी है, क्या ऐसा नहीं है? देखा तो ठीक है, यही वो जोड़ है परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया है। जब परमेश्वर कुछ भी करने का मन बना लेता है तो उसे होना ही है। शैतान ने लैंगिक इच्छा से उस तस्वीर को बिगाड़ दिया, स्त्री के द्वारा कि बालक को उत्पन्न करे, उसने इसे बिगाड़ दिया। तो आगे बढ़कर और इसे करो, इसमें कोई बात नहीं है। इस स्थान में रहने को इन्हें चुनना है, क्योंकि एकमात्र चीज जो आप इस जीवन में करते हैं, अपने आकार और स्वरूप को चुनते हैं। आप जो हैं, यदि आप अभी लाल सिर वाले हैं तो आप तब भी लाल सिर वाले होंगे, यदि आप अभी काले सिर वाले हैं तो आप तब भी काले सिर वाले होंगे। देखो, आप अपने सर्वोत्तम रूप में जो थे, और यदि आप शैतान ने तस्वीर में बांधा डाली, आप समझ भी नहीं पाए, परमेश्वर ने आपके लिए जो विचार किया है आप वही बनेंगे। ओह, कितना महिमामय वहाँ आपका मनुष्य है। अब उत्पत्ति 2 कहें तो मुझे जल्दी करना होगा, मैं उन्हें ले लूँगा। आपको कुछ मिला है? आपको कोई मिला? क्या उनका उत्तर देना है? तो ठीक है, उत्पत्ति 2:18-21। परमेश्वर ने आदम की फसली से हवा को बनाया। उत्पत्ति 2:18-21। क्या परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, उसके बाद आदम और हवा को बनाया? क्या केन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब आइए, अब मैं नहीं, संभव है वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जिसने से लिखा है। अब जब परमेश्वर यहाँ पहले प्रश्न में, क्या उत्पत्ति 2:18-21 के अनुसार परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया? नहीं, मैं जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अब 2:18-21 ध्यान दें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं को बनाया और इत्यादि। अब परमेश्वर ने आदम की बगल से हवा को बनाया। आज स्त्री की शारीरिक संरचना और बनावट में पुरुष की तुलना में एक अधिक फसली होती है, क्योंकि आदम के शरीर से एक फसली निकाल ली गई थी। आदम को पहले से ही बनाया गया था और जीवित था और अकेला था, और तब परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। तो ये याजक लोग और इत्यादि जिन्हें पत्नी रखने के अधिकार से वंचित किया गया है, अब वो रोमन कलीसिया कुछ भी कर सकती है, या वे ही हैं जिन्हें इसके लिए उत्तर देना होगा, ना ही मुझे। खैर, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था हाल ही में, कहा आप क्या सोचते हैं? एक याजक, कहा आप यहाँ शहर में उस युवा याजक के बारे में क्या सोचते हैं जिसने उस स्त्री को लिया, उस लड़की को जो यहाँ जेफरसन विले की लड़की है, और जाकर और उससे विवाह कर लिया आयरिश कलीसिया में? आपको याद है, मैं भूल गया कि उसका नाम क्या था। मैंने कहा उससे भी विवाह करने का उतना ही अधिकार था जितना मुझे है। मैं इसके बारे में बिल्कुल यही सोचता हूँ। मैंने कहा एकमात्र चीज मुझे कहना है जो मुझे लगता है उसने गलत किया, उसे कलीसिया जाना चाहिए था और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, और तब जाकर और उस लड़की से विवाह करना चाहिए था, बजाय इसके कि इससे इस तरह से दूर भागे। अब आपको याद है जब इस बात ने कुछ सप्ताह पहले यहाँ जेफरसन विले आयरिश कैथोलिक याजक के यहाँ जगह ली थी, वो एक युवा व्यक्ति है और वो जा रहा था, उसकी यहाँ पर कोई हृदय प्रिय लड़की थी, और जब वे उसे बहुत बड़ा प्रेम दान देते, उसके साथ याजक के इलाके को बदल देते, उसे कहीं तो इंडियाना पॉलिस भेज देते, और उसने बस प्रेम दान, लड़की और सभी को ले लिया और चला गया और विवाह कर लिया, और उन्होंने उसके बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना। खैर, उसे विवाह करने का अधिकार था, लेकिन ऐसा करने का उसे अधिकार नहीं था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे उस कलीसिया में जाना चाहिए था और कहना था, यहाँ मैं एक याजक के रूप में इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ, और इससे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब परमेश्वर हवा को बना रहा है, और आदम और हवा एक ही समय में एक चीज जो उसने बनाई वो अलौकिक थी, आत्मा आदम और आत्मा हवा, पुरुष और स्त्री। फिर जब उसने बनाया आदम को यहाँ रखा, यह उसके लिए अच्छा नहीं था। देखिए, यह परमेश्वर की तस्वीर है जो हर समय खुलते जा रही है। इसी तरह हर एक चीज यह अब आगे आ रहा है, अभी खुलता जा रहा है, छह शताब्दी से होते हुए आगे और सीधे अनंतता के अंदर आ रहा है। बस परमेश्वर की तस्वीर खुलती जा रही है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। यहाँ परमेश्वर ने स्वयं को मसीह यीशु में प्रकट किया, यह दिखाने के लिए कि वो क्या था, यीशु क्या था, एक दुखी पुरुष, दुख से जान पहचान थी, प्रेमी, एक वेश्या के लिए, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ हैं? मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, न ही मैं तुम पर दोष लगाता हूँ, जा अब से पाप न करना। वो उस दिन रेगिस्तान की रेत और इत्यादि में से होकर लगभग 30 मील चलने से थका हुआ और शिथिल था। वहाँ नैन की एक स्त्री थी जो वहाँ से आ रही थी, और उसका इकलौता लड़का मरा हुआ वहीं पड़ा हुआ था। उसने शव यात्रा को रोक दिया, उस पर अपना हाथ रखा, कहा उठ, और वो लड़का जो मर गया था फिर से जी उठा। यही हमारा प्रभु यीशु है। धन्यवाद टेडी पुत्र। और वहाँ पर वो हमारा प्रभु यीशु था। वो कभी भी बहुत अधिक थका हुआ नहीं था, कभी भी अच्छा करने के लिए थका हुआ नहीं होता था। तो ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है। क्या केन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, अब बहुत ही ध्यान से सुनना। अब ओह, मेरे पास आपने लोगों को कागज में लिखते देखा है, केन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? ओह, मैं ऐसा हमेशा कहता था, और मेरा परिवर्तन होने के बाद मैंने कभी नहीं सिखाया कि वहाँ लगभग 400 वर्षों तक जलता हुआ नरक है। मुझे इसे वचन में देखना था। यदि मुझे नहीं पता तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, समझे? लेकिन अब केन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? अब इस प्रश्न का वो विश्लेषण है। और क्या केन अपनी पत्नी होने के लिए पुरुष और स्त्री की रचना के पास गया था? देखा, अब पहले में से एक, यह श्रीमती डियार्क, आप सभी ने उस रात उसकी चंगाई के बारे में सुना, कैसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी और हरेक चीज को किया। वो पड़ी हुई थी, मर रही थी, वे सुबह 2 बजे के आसपास आए, और सो अब मैं इसी तरह आया। उसका लड़का जॉर्ज, वो लड़का एक माध्यम था, एड भी, वे दुकान में थे, और मैंने वहाँ पीछे चर्चा को सुना जहाँ पहले केन को उसकी पत्नी कहाँ मिली। खैर, जिस एक को नीचे समझा था वो तर्क में सबसे माहिर निकला। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि केन को उसकी पत्नी कहाँ मिली। कहा, केन ने वहाँ जाकर और एक बड़ी मादा वानर से विवाह कर लिया, और कहा उस वानर से अश्वेत जाति आगे आती है। कहा, आप ध्यान दें कि अश्वेत व्यक्ति का सिर कुछ कुछ इस तरह से ही नुकीला होता है जैसे वानर होते हैं सिर में। खैर, मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे सुसमाचार में बस लगभग 2 महीने ही हुए थे। मैंने कहा, भाई मैं आपके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने अभी अभी उद्धार पाया है। लेकिन मैंने कहा, यदि ऐसा है तो लोगों की अश्वेत जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। जब प्रलय पूर्व विनाश हुआ, जब संसार जल के साथ नष्ट हो गया था, क्योंकि जहाज में केवल नूह और उसका परिवार ही था, केवल वे ही लोग थे जो उस जहाज में थे, अश्वेत जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। मैंने कहा, यदि ऐसा होता तो। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, अश्वेत जाति वहाँ से कभी भी नहीं आई। नहीं श्रीमान, अश्वेत जाति उसी पेड़ से निकली है जिससे हम निकले हैं, और हर एक मनुष्य जाति एक जैसे ही है, कोई भी अंतर नहीं है। बिल्कुल, हम सब बस एक, हो सकता है पीला हो और दूसरा एक भूरा, दूसरा एक काला और दूसरा एक सफेद हो, और दूसरा एक पीका और दूसरा एक लाल हो, और बस इसी तरह से। लेकिन आप सभी एक ही पेड़ से हैं। यह तो बस यहाँ पर केवल भौतिक भाग है। यह सही है, आप एक सी मनुष्य जाति हैं जिसे यहाँ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और अब ध्यान दें, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ पर लुइसविले में कुछ डॉक्टर खड़े हुए थे। मैं अफ्रीका के बारे में बात कर रहा था कि कैसे वे गरीब लोग, विशेषकर नरभक्षी प्रकार के, किस तरह से उनके पास वहाँ एक महिला थी जो एक छोटा बच्चा लिए हुए थी। उसे एक छोटी बच्ची मिली थी और उसने उस बच्ची को इस तरह से मार मार कर एक झाड़ी से बांध दिया और कुछ दिनों तक सड़ने दिया। आप जानते हैं, जब तक यह सड़ नहीं गई, इससे पहले कि वे इसे खाते, आप जानते हैं, ऐसा ही कुछ भी, वे उसे थोड़ी देर सड़ने देते हैं, नरम कर देते हैं। उन नरभक्षियों के विषय में ऐसा मत सोचना कि यह तो बहुत ही ज्यादा है। इंग्लैंड में भी वे इसी चीज को करते हैं, तीतरों को मारकर और उन्हें पेड़ों पर लटका देते हैं। सो जब उनके पंख गिर जाते हैं तब वे उन्हें खाते हैं। यही इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन लोगों की मात्र जाति है। ये सही है। और मत सोचो आपको इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ दक्षिणी राज्यों में जाएं, आपको वही चीज मिलेगी। निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य जो गोंगा या रेटल सांप को खा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है। सो जी हाँ। अब ध्यान दें, मुझे आपको बताने दो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अश्वेत, उस अश्वेत जाति का इससे कोई लेना देना नहीं है। केन, अब मैं चाहता हूँ कि आप देखें, उन्होंने कहा कि वो नोंद देश में गया। अब केन अदन में था, और अदन, अदन का बगीचा जो अदन के पूरब में स्थित था, क्या यह सही है? अदन का बगीचा अदन के पूर्व की ओर, अदन के पूर्व दिशा की ओर था, और उन करूबों को रखा गया था, और जीवन का पेड़ बगीचे के पूर्वी फाटक पर था। और यही वो जगह है जहां मैं सोचता हूं कि केन और हाबिल ने उनके बलिदान को चढ़ाया, और यही वो जगह है जहां जलती हुई तलवार के साथ वे करूब हैं जो फाटक के पूर्व में है, उन्हें अब अंदर नहीं आने देंगे। क्या आपने ध्यान दिया, यीशु पूर्व से आएगा, प्रकाश पूर्व से उदय होता है, हर एक चीज आती है, विकास की प्रगत अवस्था पूर्व से शुरू होकर और पश्चिम की ओर यात्रा करता है, जब तक कि ये गोल चक्कर लगाकर और फिर से अपने जगह को नहीं लेता है। हम पश्चिमी गोलार्ध या आधा गोला है, यह पूर्वी है। पूर्वी सबसे विकास की प्रगत अवस्था है, चीन की सबसे पुरानी विकास की प्रगत अवस्था है, जिसे इतिहासकारों के द्वारा आज दुनिया में जाना जाता है पूर्व। ओ, हम किस तरह से इन सवालों पर घंटों तक बने रह सकते हैं, इस एक पर, लेकिन ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ कितने लोग जानना चाहेंगे कि हम केन के बारे में क्या विश्वास करते हैं, केन की पत्नी कहाँ और कौन थी, आइए देखते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि केन ने क्या किया, और यह एकमात्र उचित उत्तर है जिसे आप समझ सकते हैं। केन ने अपनी खुद की बहन से विवाह किया। उसे ऐसा करना था क्योंकि तब धरती पर केवल एक ही स्त्री थी। बाइबल केवल 3 के जन्म लेने का विवरण देती है, हाम, शेम, या नहीं, मुझे क्षमा करना, केन, हाबिल और सेत थे। लेकिन यदि वहाँ कोई नहीं था, बाइबल शायद ही कभी एक लड़की के जन्म को बताती है, आप ये जानते हैं। अब मैं निश्चय ही आज रात महिलाओं के विषय को लूंगा, लेकिन देखो, दुनिया महिलाओं की आराधना करती है, लेकिन महिलाएं शुरुआत में शैतान का साधन थी, और एक अधर्मी को आज सबसे अच्छा साधन मिला है, वो दुनिया में सभी शराब बेचने वाले की तुलना में अधिक प्रचारकों को नरक में भेजेगी। एक छोटी सी मनमानी व्यवहार करने वाली महिला, उसके मुंह के कोने में सिगरेट दबाए हुए होने दो और उसके सभी बाल इस तरह से ऊपर घुमाए हुए हों और बड़ी बड़ी लंबी आँखों की पलकें जिसे ऊपर और नीचे झपकाती है, भाई थोड़ा सा उस पर एक तरह की सुंदर दिखने वाली शारीरिक बनावट देखना कि वो क्या करेगी। प्रचारक, बेहतर होगा कि आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढाक लें, यह सही है। अब मुझे मत बताओ तुम पुरुष लोगों, मैंने इसके विषय में बहुत कुछ देखा है। अब यहाँ देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन को यीशु मसीह पर केंद्रित रखें और अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। जैसा कि पौलुस ने वहाँ कहा, यह हम जानते हैं कि हमारे पास एक बहन की अगुवाई करने की सामर्थ है, मेरे पास ऐसा करने की सामर्थ है, लेकिन कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो वो ऐसा नहीं करेगा, उसने कहा मैं जानता हूँ कि सेवकाई को उनके अनुसार जीना चाहिए, दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधो। आप जानते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं क्योंकि हम एक प्रचारक हैं, आप और मैं नहीं, मैं नहीं कहता भाई, लेकिन प्रचारक सोचते हैं क्योंकि वे प्रचारक हैं कि वे कलीसिया के उस एक आम विश्वासी सदस्यों से बड़े हैं। आप बड़े नहीं हो और आप परमेश्वर की दृष्टि में उस शराबी की तुलना में अधिक नहीं हो जिसे एक घंटे पहले परिवर्तित किया गया था। यही एक चीज है जिसे सुधारक ने कभी भी साफ नहीं किया, ये वो चीजें हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करता हूँ, आदरणीय, बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ एक आज की एक रिवाज की बात बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आदरणीय और बिशप और डॉक्टर और वे सारी चीजें मनुष्य के बनाए हुए शीर्षक हैं और वे बेकार की चीजें हैं। बाइबल में वे पतरस, याकूब, पौलुस, यूहन्ना और बाकी के सब लोग थे। पौलुस ने कहा, अब यहाँ मैं जानता हूँ कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ जो कि मेरा कर्तव्य है, मैं एक प्रचारक हूँ, वो एक प्रचारक है, भाई नेविल एक प्रचारक है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है एक प्रचारक होना। ठीक है, यही है वो जो हमें करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ तो करने दो। पौलुस ने कहा, जो उससे भी परे है, अब मुझे पैसे लेने का अधिकार है। पौलुस ने कहा, लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए तंबुओं को बनाने जा रहा हूँ कि मैं बलिदान को कर सकूँ। उसने कहा, ये आदर की बात है, विवाह सभी बातों में आदर की बात है, बिछोना निष्कलंक रहे, यह एक मनुष्य के लिए अच्छा है कि विवाह कर ले। उसने कहा, मुझे विवाह करने का अधिकार है, अब मैं विवाह कर सकता हूँ, मुझे विवाह करने का विधि सम्मत अधिकार है, लेकिन मैं बस विवाह को नहीं करूँगा, मैं प्रभु के लिए एक और बलिदान को करना चाहता हूँ। देखा, फिर उसने कहा, हर एक मनुष्य अपनी बुलावट को जानता है, उसे वैसा ही करने दे। जैसे कुछ लोग परमेश्वर के वचन के खातिर जीवाणुहीन होते हैं और इत्यादि, हम अपने कर्तव्य के अलावा भी कुछ तो करना चाहते हैं। और यदि आप वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से फिर से जन्मे हो और कहते हो, तो ठीक है, कलीसिया जाना मेरा कर्तव्य है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, ओ प्रभु खैर मैं इससे और अधिक करना चाहता हूँ, मैं मसीह के लिए कुछ प्राणों को जीतना चाहता हूँ, मैं कुछ तो करना चाहता हूँ, मैं बीमार लोगों के पास जाकर या उनके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ, अंतिम संस्कार में प्रचार करना मेरा कर्तव्य है, सुसमाचार का प्रचार करना मेरा कर्तव्य है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ तो और करने दो, मुझे बाहर जाकर और कुछ तो ऐसा करने दो जहाँ परमेश्वर मुझे इसके द्वारा आदर करेगा। अब वापस केन पर आएंगे, क्योंकि हवा ही एकमात्र स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और यदि उसकी कोई पुत्रियां नहीं थी, जब वो अंतिम स्त्री एकमात्र स्त्री मर जाती है तो मनुष्य जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या यह सही है? अब कोई और स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उसके पास पुत्रियां होनी थी, और केन ने अपनी बहन से विवाह किया क्योंकि उसे करना था। महिलाओं के उत्पन्न होने के लिए वहाँ कोई और स्थान है ही नहीं, और यह उन दिनों में वैध और विधि सम्मत था, यहाँ तक कि अब्राहम के लिए भी और यहाँ तक कि आगे इजहाक के लिए भी। इजहाक ने अपनी ही चचेरी बहन से विवाह किया और अब्राहम ने अपनी ही बहन से विवाह किया जो लहू की बहन थी। उसके पिता की उसकी माताएं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पिता है, और जीवाणु पुरुष वर्ग से ही बाहर आता है। सारा जिसने अद्भुत इजहाक को जन्म दिया, क्या यह सही है? वहाँ उस समय धरती पर कोई नहीं था, यह सब छाया में था, यह दर्शाता है कि यहाँ है ये भाई इजाक रिबिका करिसिया का एक नमूना है और इजाक दुल्हन का एक नमूना है मसीह। क्या यह सही है? और उनमें अवश्य ही लहू का संबंध होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, लहू का संबंध। सो केन ने अपनी बहन से विवाह किया और यही है। फिर वे वहाँ से नोन देश में चले गए। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम एक गहरे विषय के अंदर चले जाएंगे और मैं खुश हूँ कि आपने इससे आगे कभी भी नहीं पूछा। जैसे कि उस दिन पर उस देश में वे बड़े बड़े दानव कहाँ थे? जोसेफस और अन्य लोगों के पास इस पर बहुत से तर्क वितर्क हैं। आमीन। यदि मैंने इसे सही से नहीं लिया तो भाई तो इसे रविवार सुबह फिर से दे देना तो ठीक है। क्या आप इसे समझा सकते हैं कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार सातवां दिन है? मसीह लोग सप्ताह के पहले दिन रविवार को कलीसिया जाते हैं। क्या उन्हें सप्ताह के सातवें दिन शनिवार को नहीं जाना चाहिए? खैर, अब प्रिय मित्र, जिस किसी ने भी यह पूछा है, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक पुराना प्रश्न है जिस पर आज हजारों विद्यार्थी लोगों के बीच बहस होती आई है। लेकिन क्या मैं आप मुझे मेरा अनुवाद देने दें? आप देखते हैं मैं यही सब कर सकता हूँ। और यदि मैं सही नहीं हूँ तो ठीक है, आप मेरे साथ धीरज धरना और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। आप देखना यदि मैं इसे गलत बताता हूँ। अब जहाँ तक नियम की बात है, अब यह हो सकता है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। यह मेरा पहला अध्ययन था जो सेवंथ डे एडवेंट था। यह सही है, जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट था जिसका मैंने सबसे पहले अध्ययन किया था। और जब उन्होंने आकर और मुझे ये बताया कि शनिवार सातवां दिन था भाई, तो यह यहूदी कैलेंडर के अनुसार था और रोमन कैलेंडर ने इसे व्यवस्थित नहीं किया और शनिवार को वास्तव में रविवार होना था। खैर, उन्होंने मुझे किसी चीज पर यकीन दिलाया था जिसे मैंने सही सोचा था। और जब तक मैं उनके साहित्य को पढ़ रहा था तब तक मुझे इसके लिए सही लगा था 100%। लेकिन एक दिन मेरे हाथ एक बाइबल लग गई और तब मैंने देखा कि यह अलग ही था। देखा, अब सप्ताह के चक्र के अनुसार शनिवार सबत का दिन है। अब हम नहीं जानते, इसे बदल दिया गया है और हमें बहुत सारे बदलाव मिले हैं कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह बस कौन सा था, समझे? क्योंकि हम अब यहूदी दावा करते हैं कि हम बस लगभग ये ठीक अभी 1970 के आसपास हैं, उनके चक्र उनके कैलेंडर के अनुसार। रोमन कैलेंडर इसे 1953 मानता है और उनके पास एक और कैलेंडर था जो इसे कहीं तो और ले जाता है। लेकिन यही है जो इसे मसीह धर्म का प्रमाण बनाता है। यह सब मसीह के जन्म पर आधारित है। आप देखिए, यही है जहां हम इसे लेते हैं। अब लेकिन अब सातवें दिन के रूप में अब वहां बहुत सारे पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो सबत को मानने वाले शनिवार सबत का पालन करते हैं। अब वे कहते हैं बाइबल में आपके लिए इसे मानने के लिए कोई वचन नहीं है रविवार को इस एक दिन के रूप में। अब मैं नए नियम में सबत के दिन के बारे में भी यही बात कहूंगा। देखा, अब शनिवार विश्राम का दिन था जो यहूदियों को दिया गया था। अब यह केवल एक अवधि में दिया गया था। अब इससे हो सकता है उस पर पलटवार करने के लिए एक और सवाल खड़ा हो जाए। लेकिन अब ध्यान देना, जब सातवें दिन पर परमेश्वर ने विश्राम किया तब सातवें दिन को ध्यान नहीं दिया गया था। जहाँ तक मैं वचन के बारे में जानता हूँ, आगे लगभग 1500 वर्षों तक और जंगल में परमेश्वर ने इसराइल को चिन्ह के लिए सातवां दिन दिया। परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, अर्थात उसका यादगार विश्राम का दिन। मैं यह इस तरह से कह रहा हूँ कि इसका फायदा एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भाई या बहन को मिल सके। देखो, और उनके पास एक सुंदर कलीसिया है। और अब ध्यान दें, मैं इस प्रश्न पर बस उन लोगों से थोड़ा सा अलग होना चाहूँगा। अब परमेश्वर ने सातवें दिन को पवित्र ठहराया। छह दिन मनुष्य था, सातवां दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन था जो एक नमूना था, छह शताब्दी का एक नमूना था। अब इस पर ध्यान दें कैसे ये इसमें मिलता जाता है। अब जब यीशु धरती पर आया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि उसने सबत के दिन का पालन नहीं किया। उनके पास यीशु के विरुद्ध केवल दो ही आरोप थे, उसने सबत के दिन को तोड़ा और अपने आप को परमेश्वर बनाया और उसने कहा कि वो विश्राम के दिन का प्रभु है। वो था, वो परमेश्वर का सबत भी था और वो परमेश्वर था, इसलिए उनके पास उस पर दोष लगाने का कोई तरीका नहीं था। अब मैं बस आपके लिए इसका समाधान कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन से दिन को मानना है। अब क्या कोई वचन है? मैं इसे आपके लाभ के लिए पूछूंगा। क्या कोई वचन है भाई ब्रैनम जो हमें बता रहा है और हमें रविवार को मानने के लिए अधिकृत कर रहा है, बिल्कुल जैसे यहूदी शनिवार को मानते थे? नहीं श्रीमान, वहाँ कोई नहीं है। बाइबल में कोई वचन नहीं है, क्योंकि नए नियम में हमारे लिए या तो शनिवार या रविवार को मानना है। लेकिन रविवार को हम जिस कारण से मानते हैं, ये पुनरुत्थान का एक यादगार है, कुछ नहीं। अब आप कहेंगे रोमन कैथोलिक ने ऐसा किया, वे दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया तो संत पौलुस एक रोमन कैथोलिक था और वैसे ही पतरस, योहन्ना, याकूब और बाकी लोग वही थे, क्योंकि वे सप्ताह के पहले दिन उनकी आराधना के लिए मिलते थे। और इतिहासकारों के अनुसार उन एक मसीही यहूदी और रूढ़िवादी यहूदी के बीच अंतर करने का एकमात्र तरीका था, वे दोनों ही यहूदी उपासना गृह में जाते, लेकिन एक शनिवार को जाता था जिसने यीशु के पुनरुत्थान का इनकार किया और दूसरा एक रविवार को जाता जिसका विश्वास था कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा था। और यह एक छाप थी और यह होगा, यह अभी तक एक छाप है और यह पशु की छाप के रूप में सामने आ सकती है। अब मैं जानता हूँ कि हमारे प्रिय सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भाई लोग सोचते हैं कि यही परमेश्वर की मोहर है। उन्होंने कहा सबत का पालन करने से तुम पर मोहर लगा दी गई है। वहाँ बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो ऐसा कहता है, और यहाँ बाइबल में एक वचन है जो ऐसा कहता है कि आप पर मोहर दी गई है। इफिसियों 4:30 कहा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर तुम्हारे छुटकारे के दिन के निमित्त मोहर दी गई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब मैं आपको साबित करूंगा कि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। देखा, यही आत्मा का बपतिस्मा है, परमेश्वर की मोहर है। अब यशाया 28, उसने कहा आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ होना अवश्य है। अब देखो, अब प्रिय मित्र, अब जो लोग काम करना छोड़ देते हैं, देखो मनुष्य खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। आप इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बचाता है, आप बस परमेश्वर के उन पद चिन्हों का पालन करें, बस इतना ही। आप नहीं कह सकते यही है जो कि एक मनुष्य का स्वभाव है। वे मांस खाना छोड़ने की कोशिश करते हैं, वे सबत के दिन को मानने की कोशिश करते हैं, वे कोशिश करते हैं। यदि आप ऐसा करना छोड़ देंगे, मांस न खाने से आप बचाए नहीं जा सकते हैं। आप इसके द्वारा, उसके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, आप अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपको नया अनंत जीवन देता है। समझे मेरा क्या मतलब है? और अनंत जीवन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबत शब्द का क्या अर्थ है। क्या कोई भी जानता है? बस अपने हाथ को उठाएगा। सबत विश्राम, बिल्कुल SABBATH, सबत का दिन मतलब होता है REST, विश्राम का दिन। आपकी बाइबल के किनारे पर लिखा होता है, उसे लेकर और देखें, विश्राम का दिन। अब आइए इब्रानियों के 4 अध्याय की ओर चलते हैं। अब जल्दी से जाएंगे और हम ये ठीक यहाँ पर मेरा आखिरी प्रश्न है। और भाई देखें, क्या भाई नेविल ने उन्हें वहाँ लिया है? मैं जानता हूँ कि उनमें से कुछ छोटे प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको अधिक समय तक नहीं रोकेंगे। अब क्षमा करना जब मैं उन्हें लेता हूँ। अब जब आप इस शब्द को देखते हैं विश्राम, तो आप इसका मतलब जानते हैं सबत। अब यहाँ पर नया नियम है, यीशु संत मती में, वो संत मती के 5 अध्याय से आरंभ करता है और वो इस तरह आरंभ करता है, तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तू व्यभिचार नहीं करना। वो क्या था? नियम, आज्ञाएं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, इसे बदल दिया, क्या उसने नहीं बदला? तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तू हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ इसे बदल दिया, क्या उसने नहीं बदला? विचार करे, उसने नियम को नहीं बदला तो ठीक है। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर बिना कारण क्रोध करता है वो हत्या कर चुका। यह पीछे पुराने नियम के नीचे ऐसा कभी भी नहीं था, यह तो नया नियम है। वो बस उससे भी आगे की ओर तेजी से निकल गया। देखा, उसने आगे बढ़कर और उन आज्ञाओं को दिया, लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने चौथी आज्ञा को छोड़ दिया जो कि सातवां दिन है। अब सातवें अध्याय में जहां वो पहाड़ी उपदेश में यहां है, ये जो उसने कहा, उसने कहा तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तुम ऐसा करना और तुम ऐसा नहीं करना, और मैं तुमसे भिन्न कहता हूँ। तुमने उन्हें कहते सुना है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने उन्हें भिन्न कहते सुना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। अब इस सब के अंत में उसने चौथी आज्ञा को छोड़ दिया। अब वो थी सबत के दिन को स्मरण रखना और उसे पवित्र मानना। अब उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण में विश्राम दूंगा। अब देखो, जो कोई व्यभिचार करता है उसे अवश्य ही पत्थर मारा जाना है। व्यभिचार करने के कार्य में उनके पास ऐसा करने का अधिकार था, क्या यह सही है? और यह शारीरिक रूप से किया जाना था। जो कोई भी मारता है उसे हत्यारा होना था, लेकिन यीशु ने कहा, जो कोई भी स्त्री की ओर देखता है उसका प्राण आत्मा अब उसके शरीर में कुछ भी नहीं है, उसके प्राण को छुटकारा मिल गया है। यह तब नहीं था, यह एक स्कूल का शिक्षक था, देखो वो नियम था। अब उसने कहा, जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है वह पहले ही अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब उसने कहा, तुमने उन्हें यह कहते सुना है तू हत्या न करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कोई भी बिना किसी कारण के अपने भाई से क्रोधित होता है वह पहले ही हत्या कर चुका है। अब उसने कहा, दूसरे शब्दों में सबत के बारे में उसने कहा, तुम सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्राणों में विश्राम दूंगा। तुम्हारे प्राणों के लिए सबत, न ही भौतिक शरीर के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए। अब पौलुस को सुनना, यदि आप बस, मैं जानता हूँ कि ये गर्म और इत्यादि है, यहाँ पर भी गर्मी हो रही है, लेकिन अब आइए हम अब इसे करीब से लें जिससे कि हम इसे सुलझाना सुनिश्चित कर पाएंगे। अब पौलुस इब्रानियों को लिख रहा है। इब्रानी कौन थे? बोलिए, यहूदी थे। क्या ये सही है? अब वे नियम को मानने वाले सबत को मानने वाले थे। क्या ये सही है? क्या ये सही है प्रचारक भाई? वे सबत को मानने वाले थे, वे नियम को मानने वाले थे, तो ठीक है। अब पौलुस छाया और नमूनों के द्वारा यहूदियों को ला रहा है, दिखाते हुए कि नियम किसका नमूना है, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है। और वो आगे बढ़ता है और एक स्थान पर इसे चंद्रमा और सूरज के रूप में बताता है, जैसा कि वो चंद्रमा बस चमकते सूरज की एक छाया है, ये किसी दूसरे देश या किसी दूसरी दुनिया पर है और ये यहाँ वापस प्रतिबिंबित हो रहा है। अब लेकिन अब और यह नहीं हो सकता। इब्रानियों 9, अब इब्रानियों 4 में अब ध्यान देना, वो सबत के कथन पर आता है। अब देखो, तो इसलिए हमें डरना चाहिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। अब पौलुस सबत के मानने वालों से बात कर रहा है, उन लोगों से जो सबत के दिन का पालन करते थे। हमें डरना चाहिए जब तक कि सबत के दिन की एक प्रतिज्ञा अब तक है। दूसरे शब्दों में, या यदि आप अपने बाइबल में किनारे में लिखे हुए को ध्यान दें, या सबत का पालन करना, यह मेरे में जे है स्कॉफील्ड बाइबल से अलग, या सबत का पालन करना, देखा, तो ठीक है। हमें इसलिए हमें डरना चाहिए जबकि प्रतिज्ञा अब तक है उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें सुसमाचार को सुनाया गया है जैसे कि उन्हें सुनाया गया है वहाँ पीछे व्यवस्था के नीचे, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब यह वहाँ नियम के नीचे है, उनके पास विश्वास नहीं था क्योंकि इसे आधार बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, देखा, तो ठीक है। क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया है उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, अब उसका विश्राम, अब उसका, यह मसीह का विश्राम है, तो ठीक है, उसका विश्राम, उसका सबत। और हर बार जब मैं विश्राम का उपयोग करूंगा, ये वहाँ लिखा है, मैं सबत का उपयोग करूंगा, जिससे कि आप एक दिन को मानने के बारे में समझ जाएंगे, देखा। क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया है उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई इब्रानियों से कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि अब पौलुस को देखें, जो जाकर इसे परमेश्वर का पवित्र दिन बनाता है, यद्यपि जगत की बुनियाद के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है विश्राम के लिए या एक सबत के लिए, क्या यह सही है? मैं इसे वहाँ रखने जा रहा हूँ, देखो। क्योंकि उसने कहीं यो कहा है व्यवस्था में इस सातवें दिन के विषय में, और परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों से सातवें दिन पर विश्राम किया, वहाँ आपका सातवां दिन है। अब पौलुस इस बात को मानता है कि परमेश्वर ने उन्हें यह दिया है, यह सातवां दिन था और परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया। उसने सबत के दिन को आशीष दी, उसने इसे पवित्र ठहराया और उसने इसे पवित्र किया और इसे विश्राम का दिन बना दिया। परमेश्वर ने इसे किया अपने सभी कार्यों से, और इस स्थान पर फिर से यदि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे, यीशु बोल रहा है। अब वहाँ कहीं एक और सबत है, ये कहाँ है? अब इसे यहाँ याद रखें, परमेश्वर का विश्राम वो सातवां दिन, पौलुस ने कहा उन्होंने एक नियत स्थान पर ऐसा किया था, लेकिन अब फिर उसने कहा यदि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे। ठीक मती में यीशु के बारे में बात करते हुए, यह देखते हुए कि कितने और बचे हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश न किया। फिर से अब ध्यान से सुनना, जो कोई सुन रहा है कहे आमीन। सुनना, फिर से वो एक विशेष दिन को ठहराता है, वो एक विशेष दिन को ठहराता है। यह क्या था? हर कोई इसे एक बार में कहे, सबत, क्या यह सही है? उसने सप्ताह के सातवें दिन को इस स्थान पर सबत के रूप में ठहरा दिया, और फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर दाऊद की पुस्तक में भजन संहिता में उसे आज का दिन कहता है। इतने दिन के बाद यीशु के आगमन तक आप देखते हैं पहली बार उसे आज का दिन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। वहाँ एक और विश्राम आ रहा है, न ही एक शारीरिक, एक आत्मिक। अब देखो, ओह तुम कहते हो जब हमारे पास सातवां दिन भी होता है, अब इसे बस एक मिनट पकड़े रहना। आइए अगला पद पढ़ते हैं, देखते हैं, इसे बहुत जल्दी ना पढ़ें तो ठीक है। क्योंकि यदि यीशु ने उन्हें दिया होता था, क्योंकि यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता था, विश्राम का दिन, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। जब उसने व्यवस्था को बदल दिया व्यवस्था से अनुग्रह में, क्या वो उन्हें विश्राम के लिए एक दिन, एक विश्राम का दिन, एक ठहराया दिन नहीं देता? लेकिन उसने सबत के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, उसने रविवार के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा, उसने शनिवार के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ है जो उसने कहा, पौलुस ने कहा, अब देखो वहाँ 19वां या 9वां पद, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, यह आज का दिन है, वहाँ बाकी रहता है परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का दिन, क्योंकि वो आप और मैं जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, यीशु का विश्राम। हे सब परिश्रम करने वाले और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने भी आप और मैं आरंभ में जैसे परमेश्वर ने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है, आमीन, वहाँ आपका सबत है, क्या यह सही है? आओ हम परिश्रम करें। पौलुस ने कहा उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई अविश्वास करके गिर पड़े दिनों और इत्यादि के। देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और यहाँ तक आर पार छेदता है प्राण को और विचारों को, आइए देखते हैं, आत्मा को जांचता है, और बस एक मिनट, प्राण और आत्मा को और गाढ़ गाढ़ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और हृदय के इरादों और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। अब देखो, परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, सातवें दिन की सृष्टि की, इसे यहूदियों को यादगार के लिए दे दिया। मैं अब संत पौलुस की बात कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर। अब आप सोचते हैं कि वो इसे ला रहा था, क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई अधिकार था? अब उस गलतियों 1:8 में क्या कहता है, यदि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर और जो बातें मैंने बताई हैं उसके अलावा कोई अन्य सुसमाचार को सिखाए, उसे तुम्हारे निमित्त शापित होने दो। देखो, सुसमाचार स्पष्ट है। अब देखो, तो ठीक है भाई ब्रैनम, अब मैं क्या करूं? बस यीशु मसीह पर विश्वास करूं? नहीं, यह विश्राम नहीं है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कितने लोग जानना चाहेंगे कि मसीह विश्राम क्या है, कहें आमीन। अब आप इस पर निशान को लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो, यशाया 28 पर उसने कहा वचन पर वचन होना अवश्य है, बोलते हुए वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, और जो अच्छा है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो। भविष्यवक्ता आने वाले समय विश्राम के विषय में बोल रहा है। सबत के पूरा अध्याय पढ़े, देखें वो कह रहा है ऐसे समय जब सबत का दिन समाप्त हो जाएगा और वे शनिवार को भी उसी तरह जूते बेचेंगे जैसे उन्होंने सोमवार को बेचे थे या जो कुछ भी है, आप समझे। कहा ऐसा समय कब होगा? कहा वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो अच्छा है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो, क्योंकि मैं लड़खड़ाते होठों से और अन्य जुबानों के साथ इन लोगों से बात करूँगा। और यही सबत है, विश्राम है, जिसमें मैंने कहा कि उन्हें उसमें प्रवेश करना चाहिए, और इस सब के कारण उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, उनके सिर को हिलाते हैं और इसे अस्वीकार किया है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा उन्होंने पेंटिकॉस्ट पर किया था जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा था, और पवित्र आत्मा को सबसे पहले वहाँ पीछे लोगों को पेंटिकॉस्ट के दिन दिया गया था। यह वो विश्राम है, परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का दिन। तो यही केवल एक कारण है कि हम रविवार को मानते हैं, जिसे बाइबल के हमारे पूर्व पिताओं के द्वारा आरंभ किया गया था। संत पौलुस, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका और वे सभी, वे घर घर गए। उन्होंने सप्ताह के पहले दिन पर प्रभु भोज लिया जब वे चेले एकत्र हुए, और इसे सबत का दिन नहीं लेकिन प्रभु का दिन कहा गया। यूहन्ना ने कहा पतमुस टापू पर कलीसिया में पहले से ही आधिकारिक रूप में स्थापित हो चुका है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था, ये सही है, देखा और फिर उसने देखा। और अब प्रभु का दिन ही प्रभु के जी उठने का दिन है। अब आप इतिहासकारों को पढ़ें, जोसफस, अगाबस, उनमें से बहुत से हैं, मेरा मतलब अगाबस नहीं, ओह मैं नहीं, उनके प्राचीन लेखकों में से कोई भी, और आपको वहाँ पता चल जाएगा। कलीसिया के इतिहासकार पौस के शहीदों की किताब उनमें से बहुत से हैं, और आप वहाँ पर पाएंगे कि एकमात्र अंतर है वे यहूदियों का एक झुंड है। उनमें से एक ने उन्हें नरभक्षी कहकर बुलाया जो मसीही लोग थे। उन्होंने कहा एक मनुष्य था जिसे पॉन्टियस पिलातुस ने मार डाला, और चेलों ने आकर उसके शव को चुरा लिया और उन्होंने इसे छिपा दिया, और हर एक रविवार को वे इसका कुछ भाग खाने जाते हैं। वे प्रभु भोज ले रहे थे, आप देखते हैं, उन्होंने बस वे उसके शरीर को ले रहे थे, आप देखो, उन्होंने कहा कि वे प्रभु के देह को ले रहे थे, प्रभु भोज को, और वे नहीं जानते थे कि ये क्या था। और उसने कहा वे नरभक्षी थे, कहा वे सप्ताह के पहले दिन जाकर खाते हैं, वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस मनुष्य के शरीर को खाते हैं। और केवल इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या वे नियम को मानने वाले थे और पुनरुत्थान का कट्टर रूप से इनकार करने वाले थे, या क्या वे मसीह लोग थे और पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। एक शनिवार को कलीसिया जाता था और एक रविवार को कलीसिया जाता था, जो उनके बीच एक छाप थी। यह बहुत ही गहरा है, क्या नहीं है? तो ठीक है, आशा करता हूँ कि इससे समझ जाएगा। पवित्र आत्मा, अब आपको वहाँ कुछ मिला भाई, आपको चाहिए, क्या आप आगे जाकर इसका उत्तर देना चाहते हैं? आइए देखें, ठीक है, ओ हाँ। अन्य जातियों के समय काल समाप्त होने पर आता है, तो क्या उसके बाद भी यहूदियों के पास बचाए जाने का अवसर होगा? ओ प्रभु, क्या ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न नहीं है? हमारे पास सचमुच में इसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बताने दें, और आप मेरे शब्दों को लें, मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप मेरे शब्दों को लेते हैं जब मैं इसे समझाता हूँ परमेश्वर के प्रति, तब आप जाकर इसे देखेंगे, देखो और फिर आप जान जाएंगे। क्योंकि मैं कल्पना करता हूँ, मैं घड़ी को नहीं देख सकता, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि यह बीत चुका क्या वक्त हुआ है, कितना 9:30 बजे है, मुझे अभी अस्पताल जाना है और न्यू अल्बनी भी जाना है, और हमें सुबह को 3:25 पर उठना है, सो और मैं इस हफ्ते भर से किसी भी रात 2 या 3 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं गया हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, अब जल्दी करेंगे इसे लेने के लिए। हाँ मेरे प्रिय मसीही मित्र, अन्य जातियों के दिन समाप्त हुए हैं, ठीक अभी समाप्त हो रहे हैं, और परमेश्वर यहूदी के पास लौट आएगा। और मैं इस छोटी सी कलीसिया से कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, और देश के भिन्न भिन्न भागों से इसके संबंध में भविष्यवाणियाँ यहाँ आ रही है। मेरा विश्वास है कि यहूदी अब बस एक मिनट के लिए अब अपने कोट को पहने रहें। यहूदी कभी भी मसीही कलीसिया की हर एक चीज का विचार नहीं कर पाया। यहूदी ने मुझसे बहुत सी बार बताया है, भाई आप परमेश्वर को तीन भागों में काट कर और मुझे नहीं दे सकते हैं। यहूदी का एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। और अन्य जाति ने इसे बहुत अधिक गलत समझा है, इतना तक कि उसने इसे इस तरह से सिखाया है। मगर ज्ञान के साथ मैं सोचता हूँ उसके पास इस बात के लिए एक धारणा या विचार है कि वहाँ तीन ईश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है, प्रकटीकरण तीन है, एक व्यक्ति में तीन व्यक्तित्व। और जब आप संदेश प्राप्त कर सकते हैं, मैंने हाइमन एप्पलमैन से कहा, आप में से बहुत से लोग उसे जानते हैं, उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उस संदेश को फिलिस्तीन तक ले जाएंगे? कहा, वहाँ ऐसे लाखों यहूदी लोग होंगे जो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। देखिए, ये सही बात है। अब मैंने कहा, यहाँ पर हमारे पास संदेश है, यीशु देह में बेपर्दा हुआ यहोवा था, बेपर्दा होकर नीचे आया। अब परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये आपकी उंगली की तरह नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। सारी चीज बस इस तरह से है, नहीं। परमेश्वर, मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसे आपके लिए खोलकर बताया था। देखो, वहाँ एक में त्रिएकता है, मैं एक में त्रिएकता हूँ, मैं प्राण शरीर और आत्मा एक ही व्यक्ति में हूँ। क्या यह सही है? निश्चय ही, मैं कोशिकाओं का बना हुआ हूँ, लहू और नसों का, और फिर भी एक ही जीव हूँ। समझे, हर एक चीज जो आप देखते हैं वो त्रिएकता में है और एक में त्रिएकता है। वहाँ उस जहाज में एक त्रिएकता थी, नीचे वाले मंजिल पर रेंगने वाली चीजें थी, दूसरी मंजिल पक्षियों उड़ने वाली चीजों के लिए थी और तीसरी मंजिल नूह और उसके परिवार के लिए थी। हर एक चीज उस भवन में, वहाँ एक सभा के लोग थे, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, समझे, और तीन समय काल रहे हैं, पितृत्व, पुत्रत्व और पवित्र आत्मा का समय काल। देखा मेरा क्या मतलब है? लेकिन वो तीनों सारे, हम नहीं कहते हमारे वे परमेश्वर हैं, यह मूर्ति पूजक है और यहूदी इस बात को जानता है। लेकिन जब आप इसे समझा सको कि यह यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, यह हर समय एक ही व्यक्ति रहा है जो स्वयं को प्रकट कर रहा है, समझे। और फिर चिन्हों और अद्भुत कार्यों से यह सिद्ध करना कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। और ये डॉक्टर रीड हेड भाई, वहाँ पर पीछे कलीसिया के शिक्षक, वहाँ पर शिक्षक हैं, स्कूल के शिक्षक, यहाँ आज रात कलीसिया में हैं। मैंने उन्हें देखा और मैंने वहाँ उनकी पत्नी और बच्चे से हाथ मिलाया। वो एक रात उसका प्रचार सुनने के लिए वहाँ पर गए थे। मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ पर हैं, यदि वे चले नहीं गए हों, सोचता हूँ कि वो लुइसविले में एक स्कूल के शिक्षक हैं। जो भी हो, वे उसे सुनने के लिए वहाँ पर गए थे। यह ध्यान करने योग्य बात है, वो व्यक्ति मेरे घर आया, वो और एक दूसरा और एक यहूदी, कुछ महीने पहले की बात है, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे बॉब जोन्स में बहुत सारी डिग्रियां मिली हैं, मैं व्हीटन से बाहर आया हूँ, सारी पढ़ाई लिखाई जो उसमें संचय की जा सकती थी। उसने कहा, जब मैं छोटा लड़का था तब से लेकर मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ, और कहा, फिर भी मेरा जीवन खाली खाली है। उसने कहा, क्या शिक्षक लोग गलत हैं? और यहाँ विचारधारा है, यदि आप में से कुछ लोग उस रात खुले द्वार पर थे जब हम कुछ लोग एक साथ प्रचार कर रहे थे। उसने कहा, जब मुझे मेरा कहना, अब सुनना इस छोटे से भवन के लोगों, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं और उन चीजों से जिनसे मदद मिलती है, इसे सुनना। उसने मुझे यहीं घर पर यह पहले ही बताया था। वो मेरे घर आए, उसने कहा, भाई ब्रैनम, कहा, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। उसने कहा, जो मैंने विश्वास किया है और स्वीकार किया है मसीह को मेरे निजी उद्धारकर्ता की नाई, क्या इससे भी बड़ी कोई चीज है? और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आत्मा से फिर से जन्मा हूँ, लेकिन मेरे पास किसी भी चीज का कोई गवाह नहीं है। मैंने कहा, भाई, मुझे ये कहने में बहुत ही बुरा लगता है, शिक्षकों ने आपको, आपके शिक्षण को भरमा दिया है। देखो, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं स्वर्ग जाने के लिए आपके रास्ते को सही मानने में विश्वास नहीं करता, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कलीसियाओं में, अब यहाँ, मुझे यहाँ पर सही मानने दें, वो बाइबल जो इसे कहती है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? शैतान विश्वास करता है और कांपता है, यह वो नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ यह गवाही को देना होगा कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, फिर से जन्म लेने और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के द्वारा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप पेंटिकॉस्टल के बारे में क्या सोचते हैं? और मैंने कहा, यही कारण है कि मैं उनसे व्यवहार कर रहा हूँ, यही कारण है कि मैं उनके साथ मूर्ख बन रहा हूँ। उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। मैंने कहा, उनकी कट्टरता और हर चीज के साथ उनके पास एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। और मैं ठीक तब अमेरिका के सबसे महान व्यक्तियों में से एक से बात कर रहा था। जी हाँ श्रीमान, वो सूडान मिशन का अध्यक्ष है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। मूल रूप से मौलिक सिद्धांत है। वो वचनों को जानता था और मृत्यु, दफन होना और पुनरुत्थान को जानता था। बस वो इस तरह प्रचार करता जैसे कि घर पर आग लगी हो। लेकिन यह ऐसा नहीं है। शैतान भी ऐसा कर सकता है। शैतान उतना ही मौलिक सिद्धांत वाला है जितना वह हो सकता है। लेकिन भाई, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहते हैं, हाँ मैं इसे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यही वो तरीका है, मेरा यह विश्वास है। जी हाँ, यह ऐसा काम नहीं करता। इसे एक नए जन्म के वास्तविक अनुभव को होना है। यह आपके और परमेश्वर के बीच कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जान सके कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कहा, भाई ब्रैनम, क्या मैं पवित्र आत्मा को पा सकता हूँ? मैंने कहा, बस वहाँ हाइमन एप्पलमैन के ऊपर हाथ को रखा और उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया। इस दूसरे यहूदी ने रोना शुरू कर दिया और वहाँ छोटे से कॉफी टेबल के कांच को तोड़ दिया और वहाँ पर बहुत ही फूट फूट कर रोया। दोनों ने कहा, भाई ब्रैनम, हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें? विद्वानों, सबसे तेज दृश्य बुद्धि जो वहाँ देश में सबसे अच्छा है। और मैंने कहा, पवित्र आत्मा को पाने का प्रेरितों का तरीका उन पर हाथ रखना है। यह सही है, हाथ को रखना। हनन्याह पौलुस पर हाथ रखने के लिए आया जिससे कि वो उसकी दृष्टि को प्राप्त कर सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। फिलिपुस वहाँ पर गया और उसने वहाँ प्रचार किया और वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में एक पूरे झुंड को बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा किस पर नहीं आया था? क्योंकि पतरस के पास चाबियां थी और वो नीचे आया और उसने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। क्या यह सही है? पौलुस प्रेरितों के काम 19 में जब वो वहाँ से होकर गुजरा था, अपोलोस वहाँ पर बिल्ली ग्राहम का नमूना था। उनके पास एक महान बेदारी थी और अच्छा समय बिता रहा था। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करने के बाद से पवित्र आत्मा को पाया है? बैप्टिस्टों के उस झुंड को कहा। उन्होंने कहा, हम यूहन्ना के अनुकरण करने वाले हैं। हम जानते हैं अपोलोस हमारा प्रचारक है। वो एक परिवर्तित हुआ वकील है, देश का सबसे चतुर व्यक्ति है। उसने कहा, लेकिन क्या विश्वास करने के बाद से तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? उसने कहा, हम जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा है भी। कहा, तो फिर तुमने कैसा बपतिस्मा लिया था? कहा, हमने यूहन्ना के निमित्त बपतिस्मा लिया। कहा, उसने मन फिराव के निमित्त बपतिस्मा दिया, यह कहते हुए कि उस आने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जब उन्होंने इसे सुना तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर को ऊंचा उठाने लगे। यह उतना ही स्पष्ट है जितना मैं वचन को जानता हूँ। अब देखो मित्र, यहाँ हो सकता है आपकी राय में थोड़ा सा अंतर हो क्योंकि हम हर चीज के साथ उलझन में पड़ गए हैं। लेकिन आइए इसे स्पष्ट करें, अपने अनुवाद को डालने का प्रयास न करें, वही कहें जो बाइबल कहती है, उसे बस उसी तरह से पढ़ें। और मैंने कहा, भाइयों, मैं केवल एक ही बात को जानता हूँ कि उन पर हाथ रखना है जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। उसने कहा, क्या आप हाथ रखेंगे और परमेश्वर से हमें आशीष देने और हमें पवित्र आत्मा देने के लिए मांगेंगे? मैंने कहा, मैं करूँगा। और हम जमीन पर घुटने टेक कर और प्रार्थना करने लगे और उन पर हाथ को रखा और उसके लगभग कुछ सप्ताह के बाद उन दोनों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और जब इस डॉक्टर रीड हेड ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो अन्य जुबानों में बोलने के द्वारा आया। जी हाँ श्रीमान, और आपके सूडान मिशनों ने कहा, हमारे पास ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है जो अन्य जुबान में बोलेगा। और वो मेरे पास आया और कहा, कोई अन्य जुबान में बोल रहा है? क्यों? क्यों? मैंने कहा, उनका यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि यीशु मसीह अज्ञात जुबानों में बोला और अज्ञात जुबानों में बोलते हुए मरा। वे पौलुस की शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकते। पौलुस उन सबसे अधिक अन्य जुबानों से बोलता था। कल एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं बल्कि 5 शब्द समझ के साथ बोलना चाहूँगा, लेकिन पौलुस की शिक्षा ने कहा भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, और उन्हें अन्य भाषा में बोलने से मना किया गया है। अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर का एक दिव्य दान है जो कलीसिया में होता है। बिल्कुल ये उसी तरह से आज है जैसा ये वहाँ आरंभ में था। बिल्कुल यही सच्चाई है। जी हाँ, वास्तव में यही बाइबल की शिक्षा है। यह एक दिव्य दान है और आप उसे उसी तरह से इनकार करते हैं जैसे आप नए जन्म का इनकार करते हैं। आप यीशु के द्वारा सिखाई गई हर एक चीज का इनकार करते हैं जब आप उसे काटने की कोशिश करते हैं। अब आप उस पर क्रोधित हो सकते हैं, उनमें से बहुतों ने ऐसा किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह अपनी जगह पर है। यह बस जूतों की एक जोड़ी के जैसे ही है। जब आप जूते की एक जोड़ी खरीदते हैं तो उनके अंदर चमड़े की पट्टी रखी होती है, और यह सही है। जब आप मसीह के देह में होते हैं तो परमेश्वर के पास यहाँ पूरी भरी हुई मेज होती है। उसके पास प्रेम होता है, उसके पास आनंद होता है। यदि मैं आपकी मेज के पास जाकर और वहाँ बैठ जाऊँ और आप कहते हैं प्रचारक आओ मेरे साथ खाओ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हो और आपके पास बीन्स और आलू और गाजर और तला हुआ चिकन और कद्दू पकवान और आइसक्रीम सब कुछ वहाँ रखा हुआ होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आलू को भी मैं उतना ही प्रसन्नता से लूंगा जितना कि बीन्स को। केवल एक चीज मैं सोचता हूँ कि चिकन को भी उतना ही प्रसन्नता से लूंगा जितना कि पकवान को। यह सब मेज पर रखा है और मुझे केवल इतना ही करना है कि कहूँ क्या आप कृपया मुझे कुछ पकवान को यहाँ देंगे, और मैं अच्छे खुले हृदय के साथ विश्वास करता हूँ मेरे प्रति आपका प्रेम है। आप कहेंगे निश्चित रूप से मेरे भाई, इसका एक अच्छा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। क्या यह सही है? यदि मैं कहूँ क्या आप यहाँ मुझे आलू देंगे, क्यों नहीं, निश्चित रूप से मेरे भाई ये लीजिए। और हर एक छुटकारे की आशीष जिसके लिए यीशु मसीह मरा और कलवरी पर उसकी प्रायश्चितता में खरीद लिया, यह मेज पर बैठा हुआ है और हर एक विश्वासी इसके सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। यदि मुझे चंगाई की आवश्यकता है तो मैं कहता हूँ पिता मुझे यहाँ कुछ चंगाई देना, और मैं इसे अपनी प्लेट में डालता हूँ और खाता हूँ। अब यदि आप भूख से मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। जी हाँ श्रीमान। और यदि भविष्यवाणी अन्य जुबान में बोलना, और फिर उस मनुष्य ने वहाँ लिखा वो नहीं जानता कि मैंने बोला, मैंने अपने आप में अन्य जुबानों से बोला था, और वो इस किताब को लिख रहा है, आप पाएंगे कि यह राष्ट्रों को तितर बितर कर देगी। और इसके अलावा इस मनुष्य के पास मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के 25 उत्कृष्ट सेवक हैं, अन्य जुबान में बोलने के दान के लिए प्रयास कर रहा है। मौलिक सिद्धांत के लोग उलट गए हैं। मसीही जीवन इस महीने की मसीही जीवन पत्रिका जो इस महीने की है पन्ना 19 पर देखें, और दिव्यता के उस बड़े दिव्य ज्ञानी को देखो। कहा क्या हम इसे स्वीकार करें, क्या हमने कुछ खोया है? मैं बहुतायत की बारिश को आते हुए सुन रहा हूँ। आपके पास लोग हैं जो इसे कोने से घुमा देते हैं, लेकिन यह एक ऐसे स्थान पर आ गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से अन्य जातियों की दुनिया को हिला रहा है। इसे अपनी संपूर्णता और सामर्थ्यों चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उंडेल रहा है। इसका कारण मैं मानता हूँ पेंटिकॉस्ट को कोने पर धकेल दिया गया है और इस तरह की भिन्न भिन्न चीजों पर क्रोधित हो जाते हैं। अभी तक समय नहीं आया था। यही कारण है कि उनमें यह सारा कट्टरपन था, लेकिन यह परमेश्वर की दिव्य प्रतिज्ञा और परमेश्वर का दिव्य वचन है, और परमेश्वर ने जो कहा है उसके लिए इसे पूरा होना ही होगा। और मेरा विश्वास है कि अन्य जाति के समय काल के खत्म होने से ठीक पहले परमेश्वर कट्टरपंथियों पर उंडेलेगा। आप इसे इस महीने के रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ सकते हैं। इसके अगस्त के प्रकाशित अंक में जाकर इसे देखो, किस तरह से वो मेथोडिस्ट प्रचारक जो वहाँ पुलपिट पर है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है जो अस्पताल के बिस्तर पर मर रहा है, और पवित्र आत्मा की गवाही आती है और वो मनुष्य तुरंत ही चंगा हो गया था। हालेलुया। निश्चय ही परमेश्वर के पास यहाँ मेज पर दिव्य चंगाई रखी हुई है। उसके पास यहाँ मेज पर भविष्यवाणी रखी हुई है। उसके पास यहाँ मेज पर अन्य भाषाओं में बोलना रखा हुआ है। उसकी देह में 9 आत्मिक दान हैं और उनमें से हरेक के लिए आपका स्वागत है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, यहाँ हैं हम। क्या अन्य जातियों के समाप्ति पर क्या यहूदी वापस लौटेंगे? जी हाँ श्रीमान, बहुत से वचन हैं। बहन भाई, चाहे आप कोई भी हो, योएल का एक काजाम टिड्डी ने जो छोड़ा उसे अरबे नाम ने खा लिया, और इत्यादि वो पेड़ और यीशु ने स्वयं ही कहा कि वे कैसे मुंह मोड़ लेंगे और इत्यादि। ओह, पूरा वचन दानियल और हर जगह इसके बारे में बताता है। हाँ, यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ में उसकी कलियों को फूटते हुए देखो तो जान लेना कि समय निकट है। मेरा विश्वास है कि यह दूसरा प्रश्न इससे कुछ संबंध रखता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यहूदियों का फिलिस्तीन में वापस लौटना बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति करता है? हमने सुना है कि आप फिलिस्तीन में जा रहे हैं, क्या यह सच है? हाँ, जी हाँ श्रीमान, मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे बड़े में से एक, यदि आप देखना चाहते हैं कि यह वर्ष का कौन सा समय है तो कैलेंडर की ओर देखते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि रात का कौन सा समय हुआ है तो घड़ी की ओर देखते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि आप किस दिन में रह रहे हैं तो देखें कि यहूदी कहाँ पर हैं। यही परमेश्वर की घड़ी है। और देखो, उसी रात उसी दिन जब प्रभु के दूत ने मुझसे भेंट की 1946 7 मई को ग्रीन मिल इंडियाना में, उसी दिन यहूदियों के लिए शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2500 वर्षों में वे पहली बार एक स्थापित किए गए राष्ट्र बने। हालेलुया। और आज रात पूरी दुनिया का सबसे पुराना झंडा दाऊद का 6 कोनों वाला तारा 2500 वर्षों में पहली बार यरूशलम के ऊपर लहराने लगा बाबुल के छीने जाने के बाद से। यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ पर उसकी कलियों को फूटते हुए देखते हो, वहाँ है वो। वहाँ उसने कहा, एक दृष्टांत को समझो। तुम कहते हो ग्रीष्म ऋतु निकट है, जब तुम इसे देखते हो तो जान लेते हो कि समय द्वार पर है। हम ठीक समय के अंत में हैं। किस तरह से दानियल के घृणित वस्तु और इत्यादि की ओर देखो। आप जानते हैं, जब यीशु ने कहा जब वो महान राजकुमार आएगा तो वो भविष्यवाणी करेगा 1260 दिन, जो 3 वर्ष और 6 महीने था। और बिल्कुल यही है जो यीशु ने प्रचार किया। वो अकेले यहूदियों के पास आया लोगों के लिए, तब उसे एक बलिदान के लिए काटा जाएगा और वो घृणित काम को उजाड़ देता है। मुसलमानों ने वहाँ उमर की मस्जिद स्थापित की है और वे यरूशलम की शहरपना को रोंद डालेंगे जब तक अन्य जातियों का समय काल पूरा न हो, और उसके बाद वो फिर से यहूदियों के पास लौट आएगा और वहाँ हर मगिदोन की लड़ाई होगी। वहाँ उसने अन्य जातियों को बुलाया ताकि अपने नाम के लिए अपनी दुल्हन होने के लिए लोगों को ले। ध्यान देना, जी हाँ श्रीमान, 144,000 सारे छुटकारा पाए हुए यहूदी हैं जिन्हें अब भी वहाँ खड़ा होना है। वे सभी उसके बाद जब कलीसिया को ऊपर उठाया जाता है तो प्रकाशित वाक्य 11 में मूसा और एलिया प्रकट होते हैं और उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और पवित्र आत्मा ने अन्य जातियों से ले लिया और कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए रैप्चर आता है। और वे यहूदी जो यहाँ बचे रहेंगे उन्हें 3.5 वर्ष तक प्रचार किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा वहाँ तेरे लोगों पर अब भी 70 सप्ताह निर्धारित किए गए हैं और मसीहा उनके बीच में काटा जाएगा। जब उसे ले लिया जाएगा, अन्य जातियों को जगह दी जाएगी और फिर उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए 3.5 वर्ष और मिलते हैं। निश्चय ही यहूदी आ रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ भाई कि जब हम इस बार फिलिस्तीन जाएंगे, ओह प्रार्थना करें वे उस बाइबल को पढ़ रहे हैं। बस एक और कथन, उसके बाद मुझे यहाँ एक छोटा संक्षेप में प्रश्न मिला है और वे इतने ही हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर यह एक प्रार्थना है, इसे देखें। डॉक्टर रीड हेड ने कहा, वहाँ खड़े होकर एक चतुर मुसलमान से बात कर रहे थे, अब अपने कान को खुला रखें। एक मुसलमान, मेरे पास उनमें के लगभग 20,000 लोग प्रभु यीशु के पास आए थे जब वहाँ उन्होंने अफ्रीका में चिन्ह और अद्भुत कार्य देखे, या नहीं 20,000 नहीं, यह सब मिलाकर 30,000 थे। मैं अनुमान लगाता हूँ कि उनमें से 10,000 लोग आए थे क्योंकि बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। और जब वे वहाँ खड़े हुए थे और मैंने कहा, मंदिर में आपके भविष्यवक्ताओं में से कौन सा भविष्यवक्ता इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है, मैंने कहा आपकी मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आपके मूल निवासियों के लिए इस व्यक्ति को चंगा कर सकती है, मैंने कहा उनमें से कोई भी नहीं, ना ही मंदिर में कोई भविष्यवक्ता, और मतलब ना ही कोई याजक, और मैंने कहा कोई भी मूर्ति ऐसा नहीं कर सकती और न ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जिलाकर खड़ा किया, जो आज मनुष्यों के बीच जीवित है। उसे पूरी तरह चंगा कौन बनाता है? जब आप उसे खड़ा हुआ देखते हैं, एक मनुष्य जिसके गले के चारों ओर जंजीर थी, उसे कुत्ते की तरह ले जाना पड़ता था। एक मिनट के समय में ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सामान्य और स्वस्थ। और डॉक्टर रीडहेड ने मुझे एक रात को बताया, जब हम वहाँ कार में बैठे हुए थे, उसने कहा, ओ प्रभु, इसके बारे में सोचते हुए उसने कहा कि यह मुसलमान उसके पास आया और कहा कि वो इस मुसलमान से बात कर रहा था जो एक बहुत ही विद्वान मनुष्य था। उसने कहा, अच्छा श्रीमान, आप अपने पुराने मरे हुए नबी मोहम्मद को त्याग क्यों नहीं देते? अब याद रखें, मुसलमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वहाँ पर अफ्रीका में एक बड़ा घंटा डोंग इस तरह से लटका रहता है और वे एक बड़ा रबड़ का हथौड़ा लेते हैं और इसे इस तरह से मारते हैं और यह पूरे देश भर में गूंज उठता है और हर एक मुसलमान रुक जाता है और याजक मंदिर के सबसे ऊपर बाहर चलकर आता है और कहता है, एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है और मोहम्मद उसका नबी है, यही इश्माइल की संतान है। देखो हाजिरा, वे हाजिरा से अब्राहम का पुत्र है। देखा, वे सच्चे यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे यीशु के बारे में सोचते हैं कि वो था, वो हमारा छुड़ाने वाला है जो स्वतंत्र स्त्री के द्वारा अन्य जातियों के पास भेजा गया है, इजाक, देखो, और सारा के जरिए से आया, और अब वे हाजिरा के जरिए से आए, इश्माइल, और वे मुसलमान लोग आए। और मोहम्मद की कब्र पर आपको जाकर देखना चाहिए, यह विचित्र है, वहाँ पर बड़ी कब्र है और 2000 वर्षों से लेकर वहाँ एक सफेद घोड़ा काठी से बांधा हुआ खड़ा रहता है। मोहम्मद ने प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और उस घोड़े पर चढ़कर और दुनिया को जीत लेगा। और हर समय वे बस एक घोड़े को दूसरे से बदलते हैं। वहाँ एक वफादार रक्षक के साथ खड़े होकर मोहम्मद के मरे हुओं में से जी उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब से लेकर 2000 वर्ष बीत चुके हैं। वे यीशु में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक नबी था। उस पुराने यरूशलेम की दीवारों पर एक बहुत बड़ी समाधि बनी हुई है जो मोहम्मद के आने के लिए है, और यहाँ नीचे एक छोटा सा पवित्र भवन है, यह यीशु के लिए है। देखो, उन्होंने कहा, यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, वे सभी इसमें उलझ गए थे। कहा, वो घोड़े पर चढ़ा और चला गया, समझे? अब वे ऐसा विश्वास करते हैं। उन्होंने आँखों के बीच एक लाल बिंदु बनाया हुआ था। वहाँ के लोग जो भारत जाने वाले लोग हैं, आप इसे ध्यान से देखना, ओह, वे वहाँ हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। और फिर डॉक्टर रीडहेड ने कहा कि वो वहाँ खड़े थे और उसने कहा, अब आप उस पुराने मरे हुए नबी को क्यों नहीं छोड़ देते और उस एक को जो मरे हुओं में से जी उठा है, एक जीवित मसीह को क्यों स्वीकार नहीं करते? अब वो विद्वान था और वो जानता था कि कैसे अपनी बात को रखना है। कहा कि मुसलमान ने उसकी ओर देखा, चतुर शिक्षित व्यक्ति, यही अमेरिका में उसने यही शिक्षा को प्राप्त किया था। उसने कहा, श्रीमान, भले श्रीमान, आपका पुनरुत्थित यीशु जो मेरे मृत नबी ने किया है, उससे बढ़कर और क्या कर सकता है? कहा, मेरे मरे हुए नबी ने मुझसे मृत्यु के बाद जीवन की प्रतिज्ञा की थी, यही है जो आपके यीशु ने किया। खैर, उसके पास कुछ तो था। कहा, अब उन दोनों ने एक किताब को लिखा। आप उस पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने लिखा है? मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो मोहम्मद ने लिखा है। वे दोनों जीवन की प्रतिज्ञा को करते हैं। कहा, आपका यीशु मेरे लिए मेरे मोहब्बत से बढ़कर और क्या कर सकता है? खैर भाई, सरल तथ्यों में यह सच्चाई है। उसने कहा, लेकिन बस एक क्षण, भले महोदय। उसने कहा, मेरे मोहम्मद ने मुझसे कभी ऐसी चीजों की प्रतिज्ञा नहीं की जैसा आपके यीशु ने की थी। आपके यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने कहा, वो जी उठा है और दुनिया के अंत तक हर समय आपके साथ रहेगा, और जो चिन्ह और अद्भुत कार्य उसने किए वो तुम भी करोगे जगत के अंत तक। तुम बीमारों को चंगा करोगे और मरे हुओं को जिलाओगे और कोढ़ियों को शुद्ध करोगे और दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। कहा, मैंने मसीही धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। कहा, अब मुझे आप शिक्षकों को यीशु मसीह को उत्पन्न करते हुए देखने दो और मैं विश्वास कर लूंगा कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। लेकिन उससे बाहर मोहम्मद ने हमसे कभी भी ऐसी किसी चीज की प्रतिज्ञा नहीं की। उसने तो बस हमसे मृत्यु के बाद जीवन की प्रतिज्ञा की थी, और यही वो चीज है जो आप सिखाते हैं और दूसरे को दरकिनार करते हैं। वो मनुष्य सही था, वो मुसलमान बिल्कुल सही था। डॉक्टर रीडहेड ने कहा कि वो खड़े होकर और रोने लगा। कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपके विषय में सोचने लगा और वो यहाँ पर दौड़कर आया और मैंने वहाँ जाकर और उस पर हाथ रखा और उस पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतर आया और अब वो यहाँ तक दर्शन और इत्यादि भी देखता है। अब मुसलमानों को उससे मिलने दो, वो एक भिन्न व्यक्ति है। मैं कहता हूँ कि हमारा यीशु मरे हुओं में से जी उठा, वो आज जीवित है और वो उन्हीं कार्यों को आज भी करता है जो उसने तब किए थे, सभी प्रकार के चिन्ह और अद्भुत कार्य। और आप मौलिक सिद्धांत के लोग यहाँ बैठकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और बाइबल के उसी मूल भाग से चूक जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुनरुत्थित पुत्र आपके जरिए से अन्य भाषाओं में बात कर सकता है, वो आपके जरिए से भविष्यवाणी कर सकता है, वो आपके जरिए से दर्शनों को दिखा सकता है, वो आपके जरिए से अज्ञात भाषाओं का अनुवाद कर सकता है और यह सब उसका भाग है। और उसके इस भाग को ले लेना और उसके इस भाग को छोड़ देना, यह ऐसा होगा जैसे मुझे दो हिस्सों में आधा काट दिया जाए और मेरे कमर और पैरों को नीचे से लेते हुए और कहा जाए कि तुमने मुझे ले लिया है, जबकि इस भाग को आप लेते ही नहीं हैं। आपको या तो मुझे पूरी तरह से लेना होगा और यही कारण है कि मैं एक पूर्व सुसमाचार का प्रचारक हूँ। यह विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। आमीन, महिमा। मैं अभी एक पवित्र शोर शराबा करने वाले की तरह महसूस करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं इसे विश्वास करता हूँ। मती 24:29 इसके विषय में बताता है, सूरज अंधकार में हो रहा है, चंद्रमा अपनी रोशनी को न देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। क्या यह रैप्चर से पहले होगा या बाद में, या यीशु के आराई धरती पर राज्य में आने से ठीक पहले होगा? मेरे नम्र विश्वास के अनुसार, अब मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वो मती 24 के बारे में बात कर रहा है। अब यीशु तारों और गिरती चीजों के बारे में बोल रहा है। मेरा विश्वास है कि ऐसा धरती पर महासंकट काल के शुरू होने से ठीक पहले होता है। अब मेरे मन में एक बहुत ही अजीब सा विचार है कि आप में से बहुत से लोग इस पर मुझसे असहमत होंगे, क्योंकि मैं पुराने समय के कुछ लोगों की शिक्षा सुनते हुए कल्पना करता था कि हम इसमें से होकर गुजरेंगे। देखिए, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि कलीसिया महासंकट काल में से होकर गुजरेगी। मुझे विश्वास है कि कलीसिया, देखो मैं नए नियम को केवल एक तरीके से सिखा सकता हूँ, वो है पुराने नियम की छाया। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पवित्र आत्मा सबत के दिन और आदि आदि के लिए, वहाँ पीछे हर एक चीज की एक छाया है। अब पीछे मुड़कर पुराने नियम में देखें, जब आप विपत्तियों को गिरते हुए देखते हो तो वे मिस्र में थी, क्या वे नहीं थी? और परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ला रहा था, क्या यह सही है? और इसराइल को कभी एक भी विपत्ति नहीं मिली, बिल्कुल जैसे विपत्तियाँ इसके होने से पहले वे गोशेन में गए, क्या यह सही है? और सूरज का प्रकाश कभी भी कम नहीं पड़ा, ना ही कोई मक्खियाँ आई, ना ही वहाँ कोई मेढक थे, कोई जू नहीं थी, वहाँ कोई तूफान नहीं था, कोई बिजली का चमकना नहीं था, ना ही वहाँ किसी पशु को मारा गया था। और जो कुछ उनके पास था उसे गोशेन में सुरक्षित रखा गया था, क्या यह सही है? यह एक कलीसिया का नमूना है जो महासंकट काल से ठीक पहले हो रहा था। यीशु ने कहा, जब ये चीजें घटित होने लगे तो अपने सिर को ऊपर करो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। देखा, मेरा विश्वास है कि चांद और सूरज और तारे, तब उन्होंने ऐसा कहा, आगे जाकर और इसे पढ़ें, कहा और मनुष्य भागकर और छिप गए और उन पर टूट पड़ा, उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की और ऐसा नहीं कर सके और इत्यादि। मैं विश्वास करता हूँ कि यह बात ठीक महासंकट से पहले जगह लेती है। अब देखो, महासंकट आता है, जब महासंकट आता है कलीसिया ऊपर चली जाती है। अब याद रखें, एक साधारण सी कलीसिया जो बिना पवित्र आत्मा के होती है वो महासंकट काल से होकर गुजरती है, यही केवल चुनी हुई होती है जो उसमें से जाती है। ओह, मैं यहाँ किसी चीज को बस कुछ मिनट के लिए जोर से रगड़ सकता हूँ, क्या आप मुझे 3 मिनट और देंगे? वे बुलाए गए रैप्चर हुए लोग क्या हैं? वे शेष बचे हुए, क्या यह सही है? तो ठीक है, मेरा मतलब है यह दुल्हन है। अब जो शेष बचे हुए रह गए थे, अब जब एक महिला स्कर्ट को बनाने के लिए एक आकार को काटने जाती है, आप इसके विषय में बात करें, वो कपड़े को सामने रखती है, क्या यह सही है? कपड़े के टुकड़े को, और वो इस पर अपना डिजाइन या खाका रखती है, वो निर्धारित करती है कि डिजाइन या नमूने को कहां से काटा जाना है, सही है? ओ भाई, इससे सचमुच आपका भला होता है। चुनाव कौन करता है? चुनाव परमेश्वर करता है। क्या यह सही है? यह मैं नहीं कह रहा, यह वो कह रहा है, और वो जिस पर चाहता है उस पर नमूने या खाके को रखता है। क्या यह सही है? अब वहाँ 10 कुआरियाँ दूल्हे से मिलने के लिए निकली, क्या यह सही है? कुआरी क्या है? कुआरी का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र। क्या यह सही है? कुआरी लड़की क्या होती है? यह एक ऐसी लड़की है जिसे कभी छुआ नहीं गया, वो एक कुआरी है। विशुद्ध या एकदम शुद्ध जैतून के तेल के जैसे कौन सी चीज इतनी शुद्ध है? इसका मतलब है कि इसे तब तक शुद्ध किया गया है जब तक यह अपनी विशुद्ध अवस्था में नहीं आ जाता। यह शुद्ध है। विशुद्ध सोना क्या है? यह तब होता है जब सारा कचरा यह गर्मी और हर चीज से होकर जाता है और सारा कचरा बाहर निकाल देता है। क्या यह सही है? सारा लोहा और लोहे जैसा धातु और बाकी का सब कुछ उबाल कर बाहर किया गया है, तब ये अपनी शुद्ध अवस्था में होता है। अब वहाँ दूल्हे से मिलने के लिए 10 जन निकले। यीशु ने ऐसा कहा, क्या यह सही है? कितने लोग इससे सहमत हैं? कहें आमीन। 10 जन उससे मिलने निकले। अब देखो, वे सभी पवित्र थे। खैर, पवित्र होने के लिए उनका पवित्रीकरण होना ही था, क्योंकि यही एकमात्र साफ होना है, पवित्र धारा जो परमेश्वर के पास है, जो पवित्रीकरण है। क्या यह सही है? अब देखो, उन सभी 10 को पवित्र किया गया था, लेकिन 5 के दिए में तेल नहीं था और 5 के दिए में तेल था। क्या यह सही है? तेल किसे दर्शाता है? अब न ही पवित्रता को, विशुद्ध अवस्था को। तेल पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि मैं यह कहूं और ये कुछ ठेस पहुंचाता हूं, पर मेरा अर्थ उस तरह से नहीं है जैसा मैं कहता हूं, अब आप मुझे क्षमा करें और कलीसिया से दूर न होना। मैं यह केवल आपकी सहायता करने का प्रयास करने के लिए पुलपिट पर हूं, समझे? अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं, धरती पर ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जो अब इतनी शुद्ध हो सकती है उनकी तुलना में जो नाजरीन की शिक्षाओं में पिलग्रिम होलीनेस और उनमें है। क्या यह सही है? वे पवित्रीकरण की शुद्धता में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, न ही यहाँ तक कि उनकी महिलाएं भी अंगूठियाँ और कुछ भी पहनती हैं। शुद्धता और पवित्रीकरण हर तरह से वे इसमें विश्वास करते हैं। होलीनेस संगठन, सारे नियमवादी, यही उनकी शिक्षा है, वे इस पर विश्वास करते हैं। पवित्र महिलाएं लंबे बाल और लंबी स्कर्ट पहनती हैं। पुरुष को यहाँ तक अपनी आस्तीन को भी ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। उनमें से बहुत से हैं, हर एक चीज यहाँ तक स्पर्श भी नहीं करते, धूम्रपान, शराब, कुछ भी, इनमें से कुछ भी नहीं। देखिए पवित्र, आप कोई साफ जीवन नहीं जी सकते। लेकिन वही नाजरीन कलीसिया, यदि कोई मनुष्य कलीसिया में अन्य जुबान में बोलेगा तो उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि वे उनमें से किसी के साथ बैठेंगे भी नहीं। अब यह सच बात है, आपको यदि विश्वास न हो तो एक बार जांच कर देख लीजिए, एक बार पता करें। वे इसके विचारों से ही घृणा करते हैं। उन्होंने कहा यह शैतान है। उनमें से 5, उनमें से 10 कुआरियां थी, 5 सियानी थी जिनके दिए में तेल था, और अन्य 5 वैसे ही शुद्ध और पवित्र थी, लेकिन उनके पास तेल नहीं था। उनका पवित्रीकरण हुआ था बिना पवित्र आत्मा के। वहाँ धरती पर 3 हैं जो गवाही को देते हैं, जल, लहू, आत्मा। संत यूहन्ना 5:7, मेरा मतलब पहला यूहन्ना 5:7 कहा, वहाँ स्वर्ग में 3 हैं जो गवाही को देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 एक हैं। लेकिन वहाँ धरती पर 3 हैं जो गवाही को देते हैं, जल, लहू, आत्मा, वे एक नहीं हैं, लेकिन वे एक के रूप में सहमत होते हैं। अब पुत्र के बिना आपके पास पिता नहीं हो सकता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बिना आपके पास पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। वे एक हैं, वे अभिन्न हैं। लेकिन आपका बिना पवित्रीकरण के धर्मीकरण हो सकता है, और आपका बिना पवित्र आत्मा के भी पवित्रीकरण हो सकता है। साफ रह सकते हैं, शुद्ध जीवन को जी सकते हैं, और भक्ति का भेष धरते हैं, और चंगाई करने और अन्य भाषाओं में बोलने की सामर्थ्य और परमेश्वर के महान दानों से इनकार कर सकते हैं। और वहाँ उनमें से प्रत्येक का, वहाँ पर आपकी 5 सयानी कुआरियाँ हैं जिनके दिए में तेल था, रैप्चर का विश्वास, सारे चिन्हों, अद्भुत कार्यों, भविष्यवाणियों और हर चीज पर विश्वास करते हुए और ये पांच बचे हुए में से काट कर निकाल दिए गए थे और उनमें से बाकी अभी भी कुंवारी थी और नाश नहीं होंगी लेकिन महासंकट काल से होकर जाएंगी। यीशु ने कहा वहाँ होगा और उन्होंने कहा हमें अपने में से कुछ तेल दो, हम अब पवित्र आत्मा चाहते हैं। अब कोई भी जानता है कि पवित्र आत्मा जकरिया 4 और याकूब 5:14 सभी जानते हैं कि यह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अब उन्होंने कहा यही कारण है कि हम तेल से अभिषेक करते हैं, ये पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अब आत्मा का तेल बाइबल ने कहा, अब इनके पास पवित्र आत्मा था और इनका पवित्रीकरण हुआ था, साथ ही पवित्र आत्मा था, हर एक परमेश्वर की सामर्थ और अद्भुत चीजों पर विश्वास करते हुए। परमेश्वर ने यहाँ जो कुछ भी कहा था उनके पास ये था, उस पर विश्वास कर रहे थे। इन्हें उठा लिया गया था और इन्होंने कहा अब हमें दे दो। कहा हमारे पास बस इतना ही है कि हम इसमें जा सकें, और वे रैप्चर में चले गए और उन्होंने कहा जाकर उनसे खरीदो जो तुम्हें बेचते हैं। उन्होंने कहा और वे तब प्रार्थना करने का प्रयास करने के लिए चले गए ताकि पवित्र आत्मा को पाएं, लेकिन अन्य जातियों का समय काल समाप्त हो गया था और सतावट बढ़ गई थी। और उसने कहा उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया था जहां पर रोना पीटना और दांत पीसना होगा, लेकिन दूसरे पुनरुत्थान में वे भेड़े होंगी जो बकरियों से अलग हुई हैं, लेकिन कभी भी दुल्हन नहीं ना कभी चुने हुए। यही स्त्री के बीज का अवशेष है। अवशेष क्या है? जो टुकड़ा काटकर छोड़ा गया उसी तरह का कपड़ा था। क्या ये सही है? आप सूती के कपड़े में से एक पोशाक काटने जाते हैं और आप सूती के कपड़े के एक बड़े टुकड़े को फैलाकर रखते हैं और उसे काटते हैं। ये आपका काम है, आप कहाँ पर डिजाइन या खाके को रखते हैं। ये परमेश्वर का काम है कि वो कहाँ पर डिजाइन या खाके को रखता है, वह उसे ठीक वहाँ से काट देता है। क्या ये सही है? और अब यह यहाँ बाकी का बचा हुआ सूती का कपड़ा ये उतना ही अच्छा कपड़ा है जितना ये पोशाक में का सूती का कपड़ा है। क्या यह सही है? लेकिन ये परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर अपनी कलीसिया का चुनाव करता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को पहले से ठहराता है। परमेश्वर ने इसे पहले से ही निर्धारित किया था, अपनी कलीसिया को पहले से ही निर्धारित किया था, और वो उस कलीसिया को ले जाता है और बाकी के बचे हुए को महासंकट में से होकर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यही है जहां आज बहुत से बाइबल के विद्वान उलझ जाते हैं, यह सोचते हुए कि दुल्हन उधर वहां महासंकट में होती है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा मैं आपको नहीं बता सकता भाई ब्रैनम, कहा मैंने दुल्हन को वहां स्वर्ग में देखा है और अजगर दुल्हन के साथ युद्ध करने के लिए अपने मुंह से पानी को बाहर निकाल रहा है और 144,000 जो दुल्हन है सीने के पहाड़ पर खड़ी हुई है। मैंने कहा ओह नहीं 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 नहीं, आपने इस सब को उलझा दिया है। दुल्हन स्वर्ग में थी और स्त्री के बीच का अवशेष ना ही वो डिजाइन या आकार नहीं, वहाँ पर बचा हुआ अवशेष था और सतावट थी रोमन साम्राज्य की, जब कैथोलिकवाद संगठित होगा और वे बड़ी कलीसिया के साथ उनकी शक्तियों को एकजुट करेंगे। क्यों? उन्होंने इसे ठीक यह एक रात टेलीविजन पर आया था, मेथोडिस्ट कलीसिया, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और पूरे क्राइस्ट की सारी कलीसियाओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, कैथोलिकवाद के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और एक सामान्य वेदी के सामने खड़े होने की। बिशप ने क्या कहा जब वहाँ उस पर एक रात एक साम्यवाद होने का मुकदमा चलाया गया? मैं खुद वहाँ खड़ा होकर इसे टेलीविजन पर देख रहा था, उनमें से सारे झुंड, और जब वो समय आता है तो सतावट बढ़ जाएगी, तब पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और सारे अन्य जुबान में बोलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे और भविष्यवाणी करेंगे और सारे चिन्ह और अद्भुत कार्य आ जाएंगे, चुने हुए लोग ऊपर जाएंगे और बचे हुए लोगों को महासंकट में से होकर जाने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाएगा, और समय के अंत में जब वे देखेंगे कि क्या हुआ है तो उन्हें शहीद होना पड़ेगा। तब देखना, आप कहते हैं अच्छा अब भाई ब्रैनम क्या आपका मुझे बताने का अर्थ यह है कि ऐसा होने वाला है कि वे लोग होंगे जो सफेद न्याय के सियासन पर वहाँ उपस्थित होंगे, वे होंगे। दुल्हन का कभी भी न्याय नहीं किया जाएगा, नहीं श्रीमान, वो मसीह में है। आप मसीह में कैसे आते हैं? एक आत्मा के द्वारा हम सभी एक देह में बपतिस्मा लेते हैं। क्या यह सही है? अब देखो यहाँ पर देखना, बाइबल ने कहा न्यायी बैठ गए और किताबें खोली गई थी, क्या ये सही है? पापियों की किताबें और एक और किताब खोली गई थी जो जीवन की किताब है, और प्रत्येक मनुष्य का न्याय उसी अनुसार किया गया था। क्या ये सही है? और न्याय कौन कर रहा था? यीशु और संत। उसने कहा वो सेवक के पास आया जो हमारा प्राचीन है, जिसके बाल ऊन के समान है, और कहा 10,000 × 10,000 उसके साथ आए और न्याय में उसकी सेवा की। यहाँ यीशु राजा और रानी के रूप में लौटते हैं, विवाह पूरा होता है और वो विवाहित हैं। यहाँ राजा और रानी खड़े हुए हैं और वहाँ वो पवित्र झुंड खड़ा होता है। परमेश्वर ने कहा यहाँ मेरी दाहिनी ओर खड़े हो जाओ। यही है किताब खोली गई थी, जो पापी थे मेरे बाईं ओर आ जाओ। यहाँ पर वे लोग हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखे गए हैं। आप कहते हैं भाई ब्रैनम मेरा नाम वहाँ पर लिखा है, मैं जाऊँगा। एक मिनट रुकना, यहूदा इस्करियोतियों का पवित्रीकरण हुआ था। भाई अब जाग जाओ, चिमटी ले लो ताकि आप इसे समझ सको। आप देखो यहूदा इस्करियोती उसकी आत्मा आज मसीह विरोधी है। आप ये जानते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर से आया और परमेश्वर के पास लौट गया। यहूदा विनाश का पुत्र था, अधोलोक से आया और अधोलोक में लौट गया। यीशु पश्चाताप करने वाले पापियों को अपने साथ ले गया, यहूदा अपश्चातापियों को अपने साथ ले गया। यदि तुम हो, यदि 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 तुम एक दिव्य चंगाई करने वाले हो तो ऐसा करो, यदि तुम ये हो तो वैसा करो। देखें यह परमेश्वर के वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए, यदि ऐसा है तो मुझे इसे दिखाओ। यदि 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 देखा, यह सब सच है, परमेश्वर ने कहा। अब देखो यहूदा इस्करियोती विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। बाइबल ने कहा यीशु ने अपने चेलों को बपतिस्मा दिया, तो ठीक है। संत यूहन्ना 17:17, इससे पहले कि वो उन्हें बाहर भेज पाता, उसने कहा पिता उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और वो वचन था, यहाँ तक इससे पहले प्रायश्चित्ता को किया गया था। दूसरे शब्दों में एक पूर्व दर्शन के नाई, पिता मेरे अपने बहाए गए लहू से मैं इन्हें पवित्र करता हूँ। उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर सामर्थ्य दी और वे निकल पड़े और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, क्या यह सही है? और उन्होंने बीमारों को चंगा किया, क्या यह सही है? और वे वापस लौटे पवित्र किए हुए, आनंदित होकर उछलते हुए, जय जयकार करते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, क्या यह सही है? और कहा यहाँ तक कि शैतान भी हमारे अधीन है। और यीशु ने कहा तुम इसलिए आनंदित न होना कि शैतान तुम्हारे अधीनता में है, लेकिन आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। क्या यह सही है? और यहूदा इस्करियोती उनके साथ था, उनमें से एक बुलाया गया, पवित्र किया गया और उसका नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखा गया था। मत्ती 10 पढ़ें और देखें कि क्या यह सही नहीं है। उसने उनमें से हरेक को बुलाया और यहूदा को और उनमें से हरेक को ठीक वहाँ पर बुलाया। उसने उन्हें बाहर भेजा, उन्हें अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध सामर्थ्य दी। अब देखो अपने आधाप से प्रभावित न होने वाले वस्त्र को पहन ले। लेकिन जब यहूदा उस कलीसिया में से होते हुए ठीक वहाँ पर आया, कलीसिया की खजांची के रूप में पास्टर के साथ काम करते हुए यीशु, लेकिन जब ये पेंटिकॉस्ट का समय आया तो उसने अपने रंग को दिखाया, उसने दिखाया कि वो क्या था और उसके विषय में पर्याप्त शालीनता के साथ उसने अपने आप को ही नष्ट किया और गुल्लड़ के पेड़ पर लटक गया ताकि भविष्यवाणी को पूरा करे। और यहूदा की आत्मा ठीक वहाँ आगे तक आएगी और प्रभु यीशु पर विश्वास करेगी, जैसे यीशु ने कहा शैतान विश्वास करता है और कांपता है। वो सीधा वहाँ तक आएगा और पवित्रीकरण को सिखाएगा, उतना ही शुद्ध पवित्र जीवन जितना यह हो सकता है। लेकिन जब ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और आत्मा के दानों पर बात आती है तो वह इससे इनकार कर देगा। वो हर समय अपने रंग को दिखाएगा, वहाँ पर यह आत्मा है। और यीशु ने कहा सावधान रहना, मत्ती 24, फिर से दो आत्माएं एक दूसरे के इतने नजदीक होंगी कि यह चुने हुए को भी भरमा देगी। क्या यह सही है? जहाँ पर वो डिजाइन या खाके को बिछाया जा रहा है, भाई बेहतर होगा पुराने चलन पर विश्वास करें। पवित्र आत्मा के प्रचारक जो यहीं पर हैं और परमेश्वर के साथ संबंध सही कर लें, यह सही है। भक्ति के भेष को धरकर और उसकी सामर्थ का इनकार न करें। आमीन। हर एक जन अच्छा महसूस कर रहा है। Yeah. हालेलुया, आइए कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं। कितने लोग उससे पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, अपना हाथ उठाएं, कहें प्रभु की स्तुति हो। प्रभु, मैं पूर्व सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, मुझे आपका सेवक होने में सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? बाइबल में वे एक महिला ने मुझसे कहा, एक लड़का, वो हो सकता है आज रात सुन रहा होगा, वो सड़क के उस ओर ही रहता है, वो वहाँ ऊपर आया और बहन लूला जो यहाँ कलीसिया में आती थी वो वहाँ पीछे जय जयकार कर रही थी, मैं प्रचार कर रहा था भाई नविल, और उस लड़के ने मुझसे कहा अब वो यहाँ फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया में संडे स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने कहा बिल्ली, मैं आपके उपदेश का आनंद ले रहा था, इतना तक कि वो महिला रोने और चिल्लाने लगी, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। और कभी तो एक बार कहा, किसी व्यक्ति ने कहा भाई सेवार्ड चिल्लाए प्रभु की स्तुति हो, आमीन। और मैं अपने जन्म सिद्ध अधिकार को खोना इस पर प्रचार कर रहा था, ऐसाओ ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच दिया, और मैं आगे बोलते जा रहा था और वे बस चिल्लाते जा रहे थे और कहा ओह, कहा इससे बस मेरी पीठ के ऊपर ठंड होने लगती है, कहा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई, यदि तुम कभी स्वर्ग जाते हो तो जमकर मर जाओगे। मैंने कहा स्वर्ग में दिन और रात निश्चय ही जय जयकार होती रहती है, और ये सही है भाई। ओह हाँ श्रीमान, आमीन। तो ठीक है भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे, ठीक वहाँ पहुँच जाएं, और ये आपका है, देखो।